The sermon Redemption by Power was delivered by Brother William Marion Branham on Monday evening, March 29, 1954, at the Mail High School in Louisville, Kentucky, USA. Yesu Samachar, Hamare Bhai William Marion Branham ke dwara, Somwar Sanj, March 29, 1954, Mail High School, Louisville, Kentucky, USA में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक सामर्थ के द्वारा छुटकारा और अंग्रेजी शीर्षक रिडेम्पशन बाय पावर है। कृपया धन्यवाद मित्रों सुसंध्या आज रात्रि यहाँ पर होना सौभाग्य है कि आप लोगों को फिर से अपने प्रिय यीशु मसीह के नाम में संबोधित करूं और परमेश्वर के लोगों से कहीं भी मिलना सदा सौभाग्य है और उस महान नाम यीशु के लिए बात करना निश्चय ही हमारे भाई ने जो अभी गाना गाया उसकी सराहना करते हैं ये मेरा मन पसंद है उस दिन जब वे यीशु को एक भविष्यद्वक्ता बनाने का यत्न कर रहे थे या एक भला मनुष्य या एक शिक्षक वो वास्तव में उसका परमेश्वरत्व लाता है कि वो क्या था और मैं विश्वास करता हूँ कि वो था उसके समान इस पृथ्वी पर कोई कभी नहीं हुआ ना कभी होगा वो इमैनुएल था वो अल्फा ओमेगा था आदि और अंत वो जो था जो है जो आएगा दाऊद का मूल और संतान भोर का तारा उसमें परमेश्वरत्व का निवास था उसमें परमेश्वर था परमेश्वर अपने पुत्र में था मसीह में संसार को अपने में मिला रहा था यीशु ने कहा ये मैं नहीं हूँ जो कार्य करता है परंतु ये मेरे पिता जो मुझ में रहता है मेरा पिता और मैं एक हैं परमेश्वर देह में प्रकट हुआ हम पर परमेश्वर का कितना शानदार प्रेम का प्रकटीकरण हुआ वो स्वयं को हम पर खोलेगा और नीचे आकर और मनुष्य की देह में निवास किया ताकि मानव जाति के पाप और रोग ले ले और हमें वापस पिता के पास छुड़ा कर ले चले ये अद्भुत नहीं है क्या निश्चय ही हम इसकी सराहना करते हैं अब पिछली रात्रि मैं समझता हूँ एक प्रकार से मैं क्षमा मांगूंगा मैं बिली मुझे थोड़ा जल्दी ले गया क्योंकि मुझे एक प्रकार की मैं कमजोर हो गया परंतु वे सभाएं वो विचारों का परखना और कोई कभी नहीं जान सकेगा कि ये क्या है जब तक कि ये आपको इसमें आना है और इसे जाने समझे इसकी व्याख्या का यत्न करने की कोई विधि नहीं है कोई विधि नहीं है कि आप कर सकें ये केवल एक अनुभव है जिसके विषय में कोई नहीं जानता केवल वही जो इसमें से होकर निकलते हैं
What it does to the human race, what it does to the man, brings the very life out of him.
ये मानव जाति के लिए क्या करता है ये मनुष्य को क्या करता है उसमें से वही जीवन लेकर आता है
Well, you're living in two worlds. You're in a world here and you're in a world there. You were somebody else maybe 50 years ago.
आप दो संसारों में जीते हैं. आप यहाँ एक संसार में जीते हैं और आप वहाँ उस संसार में. जब आप किसी के साथ होते हैं, संभव है 50 वर्षों पहले.
And you may be with somebody years to the day to come, and yet you realize you're standing on the platform here and you're speaking something that happened many, many years ago, maybe weeks ago, months ago, another nation, another place or something.
और आप आने वाले वर्षों में किसी के साथ होते हैं और फिर भी आप अनुभव करते हैं कि आप यहाँ मंच पर खड़े हैं और आप वर्षों पहले की किसी बात को बोल रहे हैं, संभव है सप्ताहों पहले की, महीनों पहले की, दूसरे देश की, दूसरे स्थान की या कुछ भी.
And then you try to keep yourself straight in that and thinking, that is quite a thing.
और तब आप अपने को उसमें ठीक बनाए रखते हैं और विचारों में आपको बताता हूँ ये कोई बात है.
But the Lord has blessed us so far and we're very happy and trust now that God will get glory from the meeting.
परंतु परमेश्वर ने हमें अब तक आशीषित किया है इसमें और अब हम बहुत आनंदित हैं और अब विश्वास करते हैं कि सभा से परमेश्वर को महिमा मिलेगी.
Now, in the services tonight, I thought while we're just a little handful of people together, our meetings is only advertised locally here, and it's just for the local people.
अब आज रात्रि सभाओं में मैंने सोचा जबकि हम थोड़े से लोग एकत्र हैं, हमारी सभाएं यही निकटवर्ती में विज्ञापित हुई हैं और ये केवल आसपास के लोगों के लिए है.
And before we get into the larger part of the meetings, I was thinking today that I would try to maybe get some of the old fashioned teaching out of the Bible to the people. That when the great event comes, if God sends it to us, then we'll be able to understand it better.
और इसके पहले कि हम सभाओं के बड़े भाग में प्रवेश करें, मैं आज ये सोच रहा था कि यदि हो सका तो मैं लोगों के लिए पुराने ढंग की शिक्षा के लिए यत्न करूंगा, बाइबल में से लोगों के लिए कि जब महान घटना आती है, यदि परमेश्वर इसे हम पर भेजता है, तब हम इसे और भली प्रकार से समझने के योग्य होंगे.
After all, divine healing is just the bait on the hook to catch the fishes. You know, it's just that's the one the fish grabs at the bait and gets the hook.
कुल मिलाकर दिव्य चंगाई मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा, जैसे कि आप जानते हैं ये केवल यही है, मछली चारे को पकड़ती है और कांटे को ले लेती है.
So our main, our one opportunity is this, that souls won to Jesus Christ.
इसलिए हमारा विशेष, हमारा अंतिम यही है कि प्राण यीशु मसीह के लिए जीतना.
If God heals you tonight, you may get sick again before you die. You may be sick again in a year from now, 2 years from now. Maybe sick in a week from now, or a day from now. I don't know.
यदि परमेश्वर आज रात्रि आपको चंगा करता है, इसके पहले कि आपकी मृत्यु हो, आप फिर बीमार हो सकते हैं. अब से एक वर्ष में या दो वर्षों में, अब से आगे संभव है, अब से एक सप्ताह में या अब से एक दिन, मैं नहीं जानता.
But there's one thing sure, you're going to leave this world some of these days, because this is just patched up. But if that soul ever comes in contact with the Holy Spirit and is born again, you have eternal life.
परंतु एक बात निश्चित है कि आप किसी एक दिन इस संसार को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल चिपका हुआ है. परंतु वो प्राण जब भी पवित्र आत्मा के संपर्क में आता है और नया जन्म प्राप्त करता है, तो आपके पास अनंत जीवन है.
No matter what happens here, you never perish. Jesus said, he that heareth my words, believeth on him that sent me, hath, that's present tense, everlasting life, shall not come into condemnation, but hath, past tense, passed from death unto life.
कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या घटित हुआ. यीशु ने कहा, आप कभी भी नष्ट नहीं होते हैं. वो जो मेरे शब्द सुनता है, मुझ पर विश्वास करता है कि जिसने मुझे भेजा है, ये वर्तमान काल है, अनंत जीवन. वो दोषी नहीं ठहरेगा, परंतु भूतकाल, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया.
That makes us all Methodists and start shouting. That's right, to think that God has did that. Now that's not my word, that's His. St. John 5:24.
ये हमें मेथोडिस्ट बनाएगा और चिल्लाना आरंभ करता है. क्या नहीं करता? ये ठीक बात है, ये सोचता है कि परमेश्वर ने ये किया है। अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये उसके हैं। संत यूहन्ना 5:24।
St. John 6, Jesus said, He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up to the last day. That's
right. संत यूहन्ना 6, यीशु ने कहा, वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये ठीक बात है।
He that eats my flesh and drinks my blood has at present tense everlasting life. Now, if it's everlasting, it doesn't just go from one revival to the other, but it goes to eternity.
वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो वर्तमान काल, अनंत जीवन। अब ये अनंत, ये एक बेदारी से दूसरी बेदारी, परंतु अनंतता में से निकलता है।
Now for some of you ministers are sitting by knowing that everlasting life comes from the same word that means God's life, the word Zoe, Greek word which means God's own life.
और अब आप में से कुछ सेवकगण जो यहाँ पर बैठे हैं, ये जानते हुए कि अनंत जीवन उसी वचन से आता है, अर्थात परमेश्वर का जीवन, वो शब्द जोई, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ परमेश्वर का अपना जीवन।
Then we become a son or daughter of God, an offspring of God, with part of God's life in us. We could no more perish than God could perish.
तब हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां हो जाते हैं, एक परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के जीवन का भाग हम में। जैसे परमेश्वर नष्ट नहीं हो सकता, हम नष्ट नहीं हो सकते यदि ये यत्न किया गया। इसलिए हमारे पास अनंत जीवन है और अंतिम दिन उठाए जाने वाले हैं। ये अद्भुत है। ये बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट से हाथ मिलावेगा और चिल्लाएगा, क्या ये नहीं है? निश्चय ही ये ठीक बात है।
That's the good thing about the old time religion. It just makes everybody step together and love one another. Sure does. Takes all the differences away. Makes new creatures.
ये पुराने समय के धर्म के लिए अच्छी चीज है। ये प्रत्येक को एक साथ प्रेम में बैठाता है। निश्चय ही सारी भिन्नताओं को हटा लेता है, नई सृष्टि बनाता है।
It'll make a tuxedo coat and a pair of overalls. Put the arms around one another and say, "Brother, how you getting along?" Sure will.
ये टक्सीडो कोट बनाता है और सारा जोड़ा, और एक दूसरे के चारों ओर अपने हाथों को डालकर कहता है, भाई आप कैसे हैं? ये ठीक बात है, निश्चय ही।
It'll make a silk dress and a calico, put their arms around and say, "Sister, love you." That's what it does. It sure does. It tears down the difference, rich or poor, bond or free, we're all one in Christ Jesus.
ये रेशम की वेशभूषा बनाएगा और एक छींट उनके चारों ओर बाहों को डालेगी और कहती है, बहन मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ये यही करता है, ये निश्चय ही करता है, केवल भिन्नताओं को समाप्त कर देता है। धनी और निर्धन, बंधुआ या स्वतंत्र, हम सब मसीह यीशु में एक हैं।
Sunday at the tabernacle, which I see is the whole group of tabernacle people sitting here, we had a Sunday school lesson on the redemption by the blood. And I got so wound up in it that I feel like I'm still in another sphere somewhere. On redemption by blood.
रविवार आराधनालय में, जबकि मैंने देखा आराधनालय के सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, और हमारा एक संडे स्कूल यानी रविवार शिक्षा का पाठ चल रहा था, लहू के द्वारा छुटकारा, और मैं उसमें इतना तल्लीन हो गया था, यहाँ तक कि मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं दूसरे क्षेत्र में कहीं पर हूँ, लहू के द्वारा छुटकारा।
And tonight, after the family had left and had come over here early to get to hear the song service and so forth, I was in the room and seemed like I began to read in the scriptures and I found something. I thought, well, if the Lord willing, I'll just talk on that a little while tonight.
और आज रात्रि परिवार के जाने के पश्चात, और यहाँ जल्दी आ गया था ताकि गानों की सेवा सुन सकूं और आदि आदि, मैं कमरे में था और ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने वचन पढ़ना आरंभ किया और कुछ पाया। मैंने सोचा, अच्छा, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आज रात्रि इस पर थोड़ी देर बातचीत करूंगा।
That's redemption by blood Sunday. Now tonight I'm going to speak on redemption by power. And tomorrow night I'm going to speak on redemption in completeness, if God willing, that is, in joy.
ये लहू के द्वारा छुटकारा रविवार को, अब आज रात्रि मैं सामर्थ के द्वारा छुटकारा पर बोलने जा रहा हूँ, और कल आने वाली रात्रि में मैं संपूर्णता में छुटकारा पर बोलने जा रहा हूँ। यदि परमेश्वर ने चाहा तो यही आनंद में
and blood and power and in joy, redemption.
लहू में, सामर्थ में और आनंद में छुटकारा।
Now, many people, fine, educated scholars, know how to break through and give these kind of revelation, maybe for this or that, or cast some.
और इसे निकालने के लिए अब बहुत से लोग, जैसे भले पढ़े लिखे विद्वान, जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रवेश करना है और इस प्रकार का प्रकाशन देना संभव है इसके लिए या उसके या कुछ छोड़ देना।
But me, I'm kind of one of these illiterate type of preachers that only thing that I know to do to be sure that I'm pretty near right anyhow is to go through the shadow.
परंतु मैं यहाँ पर एक प्रकार से अनपढ़ प्रचारकों में से हूँ, जो एक ही कार्य करना जानता हूँ, कि इस बात में निश्चित रहूँ कि मैं जो भी हो सत्य के समीप हूँ और छायाओं पर जाता हूँ।
If I started walking towards the wall and the light on this side, I could tell what, just about what I looked like, whether I was a four-footed beast or a fowl or what it was. If I see what kind of a shadow I reflect.
यदि मैं दीवार की ओर चलना आरंभ करूं और प्रकाश इस ओर हो, मैं बता सकता हूं कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूं, कि मैं चार पैर वाला पशु हूं या चिड़िया या ये क्या था। यदि मैं देखता हूं कि छाया किस प्रकार की परिवर्तित हो रही है।
Now the Old Testament was a shadow of the New Testament. It was the negative, like the moon to the sun shining on the moon reflects the light to the earth.
अब पुराना नियम नए नियम की छाया थी, ये नेगेटिव था, जैसे चांद सूर्य के लिए, सूर्य चांद पर चमकता है, पृथ्वी पर प्रकाश को परिवर्तित करता है।
And I just love the Old Testament, it's just as full of parables like that or as it can be.
और मैं पुराने नियम से प्रेम करता हूँ, ये इस प्रकार से उदाहरणों से भरा हुआ है या ये जैसे भी हो सकता है।
Now, the perfect in Genesis when God made the sun first, the moon next. That moon and sun represents Christ and the church.
अब सिद्ध उत्पत्ति में जब पहले परमेश्वर ने सूर्य बनाया, बाद में चांद और सूर्य मसीह और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone.
जैसे कि सूर्य अपनी सामर्थ और महिमा में आता है, और जब ये नीचे जाता है तो ये अपना प्रकाश चांद पर चमकाता है अंधकार में, ताकि जब सूर्य चला जाता है तो पृथ्वी पर उजियाला दे।
Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church to give the church light of the gospel until he returned. Oh my, and then they'll get married.
यीशु जब चला गया, वो महिमा में चला गया और अपनी ज्योति को कलीसिया पर चमकाता है, ताकि जब तक वो वापस नहीं आए कलीसिया को सुसमाचार का उजियाला दे ओ, और तब वे विवाहित हो जाएंगे। ये शानदार होगा, ये चांद का महान उजियाला होगा और वहाँ मेमना उजियाला होगा, उन्हें फिर सूर्य की और आवश्यकता ना होगी उस नगर में।
Now, for a little preview, let's go back into Exodus. And I hope you don't get tired of me talking Exodus.
अब छोटे से पूर्व दर्शन के लिए आइए निर्गमन में चलें, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे उबेंगे नहीं जब निर्गमन में बातें कर रहा हूँ।
One time in my church across the river, I preached, I believe, about a year and six months on Job every night.
एक बार वहाँ नदी के पार मेरे आराधनालय में मैंने प्रचार किया, लगभग एक वर्ष और छह महीने हर रात्रि कार्य पर था।
You come back, you take a little part of Job and going on, we make it run through the Bible. Every scripture dovetails together. There's no contradiction in God's word. No, sir. Never been perfect.
वे वापस आएंगे, मैं कार्य का थोड़ा सा भाग लूंगा और चलता रहा। हम इसे बाइबल में से होते हुए लेंगे। हर पवित्र वचन एक दूसरे के साथ सहमत है। परमेश्वर के वचन में विरोधाभास नहीं है। नहीं श्रीमान, हर बिंदु सिद्ध है।
The only book ever written that's inspired like that, that can perfectly, wrote by many writers many hundred years apart, and every one of them by the Holy Spirit speaking, dovetails right together.
केवल यही पुस्तक है जो प्रेरणा से इस प्रकार लिखी गई है, जो कि सिद्धता के साथ बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखी गई है और बहुत सैकड़ों वर्ष के अंतरताल से और उनमें से प्रत्येक पवित्र आत्मा के द्वारा एक सहमति में होते हुए बोल रहा है। यही कारण है कि उन सब अतिरिक्त पुस्तकों पर वो मिकाबी और आदि उनके साथ एक रास्ता में नहीं है, इसलिए मैं इसे मान्यता नहीं देता। ये मेरे लिए परमेश्वर का वचन है।
And some woman wrote me a letter and said, I was preaching Job on the ash heap. She said, Brother Branham, you've been had Job on the ash heap about long enough, don't you think? Been there about 6 weeks. Said, Why don't you ever go to get him off of the ash heap?
और बहुत सी महिलाओं ने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा, मैं प्रचार कर रहा था अय्यूब राख के ढेर पर। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपने अय्यूब को बहुत समय से राख पर बैठा रखा है, क्या आप नहीं सोचते वहाँ लगभग 6 सप्ताहों से, क्यों आप कब उसे राख पर से उठाने जा रहे हैं?
Well, I said when the Holy Spirit would push the words out there, I guess I'll just have to quit saying. But as long as he kept me talking about him on the ash heap, well, I just stayed right with it. Soul getting saved.
ठीक है, मैंने कहा जब पवित्र आत्मा वचनों को आगे बढ़ाना बंद कर देगा, मैं समझता हूँ मैं कहना ये छोड़ दूंगा, परंतु जब तक वो मुझसे इस विषय में बातें कर रहा है कि वो राख पर है, मैं इसी पर रुका रहा और प्राण बचाए गए।
Like the evangelist came to the city, he preached one night he preached on repentance, the next night he preached on repentance, the next night he preached on repentance.
इसलिए जैसे कि सुसमाचार प्रचारक नगर में आया, उसने प्रचार किया, एक रात्रि उसने प्राश्चित पर प्रचार किया, अगली रात्रि उसने प्राश्चित पर प्रचार किया, फिर अगली रात्रि प्राश्चित पर प्रचार किया।
After about 4 or 5 nights, the deacon board met him and said, Brother, can't you preach anything else besides repentance? He said, Oh yes, let them all repent first, and I'll preach on something else.
4 या 5 रात्रियों के पश्चात डीकन की सभा उससे मिलने को आई और कहा, भाई क्या आप प्राश्चित को छोड़ कुछ और प्रचार नहीं कर सकते? कहा, ओ हाँ, पहले इन्हें प्राश्चित करने दो, तब मैं कुछ और प्रचार करूँगा।
A good idea. If everyone repents, then we can preach on something else. All right.
इसलिए ये एक भला विचार है। उनमें से प्रत्येक ने प्राश्चित किया, तब हम कुछ और प्रचार कर सकते हैं। ठीक है।
For a little preview now to those, or especially those who were not at the tabernacle Sunday morning, we want to drop back over to the 12th chapter. But our basic thought tonight is in the 14th chapter. Beginning with the 13th verse of Exodus.
छोटे से पूर्व दर्शन के लिए उनके लिए था, विशेषकर वे जो रविवार प्रातः आराधनालय में नहीं थे। हम वापस 12वें अध्याय पर जाना चाहते हैं, परंतु हमारा आज रात्रि मूल विचार 14वां अध्याय है, निर्गमन के 13वें पद से आरंभ करके।
Now, we left off on the 10th verse Sunday morning of the redemption by blood. Most all of you are acquainted with the story, I'm sure.
अब हम 10वां पद छोड़ते हैं, रविवार प्रातः लहू के द्वारा छुटकारा। आप में से बहुत से कहानी से परिचित हैं, मुझे निश्चय है।
Now we know that we can pull back the leaves of this book and turn these pages over, but there's only one who can open the book. That's Jesus Christ.
अब हम जानते हैं कि हम इस पुस्तक के पन्नों को वापस पलट सकते हैं और इन पन्नों को पलट सकते हैं, परंतु केवल एक ही है जो इस पुस्तक को खोल सकता है, वो यीशु मसीह है।
John saw the book, it was sealed. He wept because there was no man in heaven could open it, no man on earth, no man beneath the earth.
यूहन्ना ने पुस्तक देखी, वो मोहर बंद थी और वो रोया क्योंकि स्वर्ग में से कोई मनुष्य नहीं खोल सका, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं।
But there was a lamb that had been slain from the foundation of the world, come tuck the book out of the right hand of him that sat upon the throne and opened the seals and opened the book, loosed the seals thereof, and he was worthy, for he had been slain from the foundation of the world. Let's speak to him tonight and ask him to open it for us just now.
परंतु वहाँ एक मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात किया गया था, आया और जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली और मोहर खोल दी और पुस्तक खोल दी और मोहर तोड़ दी, और वो योग्य था क्योंकि वो जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। हम आज रात्रि उससे बातें करें और हमारे खोलने के लिए उससे विनती करें इसी समय।
Now, kind, loving Father, we come to Thee, addressing Thee first in the name of Jesus.
अब कृपालु प्रिय पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे पहले यीशु नाम में संबोधित कर रहे हैं।
Praying now that as we stand here sheltered under this roof tonight, for that storm is raging outside, rains are twisting and blowing, we're so thankful to have the house of God to come in.
अब प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि हम आज रात्रि यहाँ इस छत के तले खड़े होते हैं, जहाँ की बाहर तूफान का प्रकोप है, वर्षा तेज और हवा चल रही है, हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए धन्यवादित हैं।
And we're thankful that there is a tower, a refuge. It said the name of the Lord is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. We're so glad that we know the name of the Lord and have come into it.
और हम धन्यवादित हैं कि एक छिपने का स्थान है। आपने कहा प्रभु का नाम सामर्थी खंबा है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित हो जाता है। हम इतने आनंदित हैं कि हम प्रभु का नाम जानते हैं और उसमें आ गए हैं।
Now we pray that you'll open this word to us tonight, Father. May the Holy Spirit come and get into the Word, circumcise the lips of this poor humble servant and the hearts of those who will listen, your children.
अब हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज रात्रि आप हमारे लिए वचन को खोलेंगे, होने पाए कि पवित्र आत्मा आए और वचन में समा जाए, इस नम्र छोटे दास के होंठों का खतना कर और वे जो सुनेंगे उनके हृदयों को आपके बालक।
And may the Holy Spirit take just the words of God and place it in every heart just where it's needed.
और होने पाए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को ले और प्रत्येक हृदय में डाल दे जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो।
Bless us now, renew our minds tonight, in Thy Spirit, get glory out of the service, save the lost, heal the sick, bring home the backslidden, Lord. And we'll give Thee the praise, for we ask it in Thy name of Thy beloved Son, Jesus. Amen.
अब हमें आशीषित करें, आज रात्रि अपने आत्मा में हमें फिर से नया करें, इस सेवा से अपनी महिमा लें, खोए हुओं को बचा लें, बीमारों को चंगा करें प्रभु, पिछड़े हुओं को घर वापस ले आएं और हम तेरी स्तुति करेंगे, क्योंकि हम ये तेरे नाम में मांगते हैं, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में, आमीन।
We were reading the redemption by blood, how that God had ordained a lamb to be slain in each house, how there would be nothing left over.
अब दसवां पद निर्गमन के बारहवें अध्याय का निकालें। हम लहू के द्वारा छुटकारे को पढ़ रहे थे, कैसे परमेश्वर ने प्रत्येक घर में मेमना बलिदान होने के लिए ठहराया, कैसे वहां पर कुछ भी नहीं छूटा था।
The judgment had been fallen, and the last judgment now was ready to fall. God was going to fulfill His word to the letter. And all those judgments back there was a perfect sign or a perfect type of the judgments which are ready to fall now.
न्याय हो रहा था और अब अंतिम न्याय होने वाला था। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहा था। प्रत्येक अक्षर और वे सारे न्याय सिद्ध चिन्ह थे या सिद्ध प्रतीक न्याय के जो उन पर पड़ने वाला था।
And if you'll notice, before the judgment fell, now ministers may disagree with me on this, which is all right, but before the judgment started hitting Egypt, God sent Israel to Goshen.
और यदि आप ध्यान देंगे इसके पहले कि न्याय हो, अब संभव है सेवकगण इस पर मुझसे सहमत ना हो, जो कि ठीक है, परंतु इसके पहले कि मिस्र का न्याय होना आरंभ हो, परमेश्वर ने इज़राइल को गोशेन में भेज दिया।
They were in Goshen and no plague fell on them. A perfect type of the church carried over to the tribulation. All right.
वे गोशेन में थे और उन पर कोई विपत्ति न आई, एक कलीसिया जो सिद्ध रूप में आगे बढ़ी कष्टों में से होते हुए, देखिए ठीक है।
Then at the last plague that struck the earth, there struck Egypt, was death. All you Bible readers here know your Sunday school lessons and so forth, has taken this perhaps many times. But death was the last enemy that struck Egypt.
तब अंतिम विपत्ति जो पृथ्वी पर पड़ी यानी मिस्र पर पड़ी वो मृत्यु थी। आप सब जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप अपने संडे स्कूल को के पाठ को जानते हैं और आदि आदि, संभव है उन्होंने इसे बहुत बार लिया हो, परंतु मृत्यु ही अंतिम शत्रु था जिसने मिस्र पर हमला किया।
And the last enemy that's going to strike the church now is death. Spiritually speaking, those who will not follow Christ and baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die. The churches, you see it now.
और अंतिम शत्रु जो कलीसिया पर आक्रमण करने वाला है वो मृत्यु है। आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, वे जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में मसीह का अनुकरण नहीं करेंगे वे आत्मिक रीति से सूख और मर जाएंगे। वे कलीसियाएं, अब आप इसे देख सकते हैं।
After many, many great revivals and evangelists have passed through the land, and yet the church is, that is politically church speaking, is getting worse all the time.
बहुत सारी बड़ी बड़ी बेदारियां और सुसमाचार सभाएं इस राष्ट्र में हो गईं, और तो भी कलीसिया जो कि राजनीति कलीसिया बोल रही है वो हर क्षण खराब होती जा रही है।
Its members are just living any way they want to, doing anything they want to, yet calling themselves Christians, they say they're all right.
उसके सदस्य जैसे चाहते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तब भी स्वयं को मसीह कहला रहे हैं, वे ठीक हैं।
To be a Christian means to be Christ-like. Go to a place you wouldn't want to be if Christ would come. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Doing nothing that you wouldn't want to be doing when Christ comes. Think nothing you wouldn't want to be thinking when Christ comes.
मसीही होने का अर्थ मसीह के समान होना, उस स्थान पर ना जाएं जहां आप नहीं होना चाहते। यदि मसीह आ गया कुछ ना कहें जो आप नहीं कहना चाहते हैं, जब मसीह आता है कुछ ना करें जो आप नहीं करना चाहते हैं, जब मसीह आता है कुछ ना सोचें जो आप नहीं सोचना चाहते, जब मसीह आता है।
Keep your one motive, your heart centered on Calvary. Amen. Walk in the light as he is in the light. And we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness.
अपना एक ही ध्येय रखें। आपका हृदय कलवरी पर केंद्रित है, आमीन। ज्योति में चलें, जैसे वो ज्योति में है, और हमारी एक दूसरे से संगति है, और यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के पुत्र का हमें सारे अधर्म से शुद्ध रखता है।
That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in him.
ये मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट और हम सबको मिलाकर उसमें एक करता है।
Now, the last thing was death, and before that death came, there was an atonement made for that death for all who desire to escape it.
अब अंतिम चीज मृत्यु थी, और उस मृत्यु से पहले जब वो आती है उस मृत्यु से एक छुटकारा था उन सब के लिए जो उससे बचना चाहते थे। और पहले नाश से पहले एक छुटकारा दिया गया संसार के जल विनाश से पहले। परमेश्वर का एक धार्मिकता का प्रचारक था नूह और उसने लोगों को नाव में बुलाने के लिए 120 वर्षों तक प्रचार किया और जिन्होंने अपनी इच्छा से न जाना चाहा तो उनके लिए न्याय को छोड़ और कुछ न बचा। आज जो मसीह की ज्योति में चलने से इनकार करता है तो उसने अनुग्रह पर लात मार दी तो न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचा बस। केवल दाहिनी और बाईं दिशा है आप केवल एक ओर जा सकते हैं और आपका अपना चुनाव है।
Now, we see before the great awful night come that Israel was commanded, we've already taken that of killing the lamb.
अब हम देखते हैं इसके पहले की भयानक रात्रि आए जिसमें इसराइल को आज्ञा मिली थी और उसे पहले ही ले लिया है मेमने का बलिदान करना।
God was bringing his church into the Exodus to bring it out of Egypt into the promised land. I like that.
परमेश्वर अपनी कलीसिया को निर्गमन में ला रहा है कि उसे मिस्र से बाहर निकाले और प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। मुझे यह अच्छा लगता है।
They were going over to possess the land. God gave them the land and yet it was all fenced in with big great buildings and fences and walls around Jericho, the church, to run races around it.
वे वहां उसका अधिकार पाने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें देश दिया और अब भी वो उस बड़ी महान इमारतों से और बाढ़ से घिरा हुआ था और यरोही के चारों ओर दीवार थी उसके चारों ओर रथ दौड़ सकता था।
And just think of that, yet God said, I'll give it to you, it's yours, but they had to clean it up.
और थोड़ा इस पर सोचें, तो भी परमेश्वर ने कहा मैं ये तुम्हें देता हूँ ये तुम्हारा है परंतु उन्हें शुद्ध करना था उसे साफ करना था।
And that's what God has said today. He's given every one of you it wants it, the baptism of the Holy Ghost. But you got to go and possess it, that's all. Fight out the differences and tear down the walls and get started in there and get it.
और आज परमेश्वर ने यही किया है उसने आप में प्रत्येक को दिया है जो इसे चाहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परंतु आपको भीतर जाकर अधिकार लेना है बस यही है। भिन्नताओं से युद्ध करें दीवारों को गिरा दें और उसमें आरंभ कर दिया और ले लिया। आप कहते हैं पास्टर ने कहा है कि ये आज हमारे लिए नहीं है केवल आगे बढ़ो। माँ ने कहा है मैं तुझे घर से भगा दूंगी आगे बढ़ते रहें। पति ने कहा मैं तुझे छोड़ दूंगा आप आगे बढ़ते रहें। यही है आगे बढ़ना और अधिकार लेना यही है।
And it's yours, but you have to go and possess it.
दिव्य चंगाई आप में से प्रत्येक के लिए है। आप प्रत्येक जो यहाँ इस रात्रि कैंसर हृदय रोग जो भी है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है और ये आपके लिए है परंतु आपको जाकर उसे अधिकार में लेना है। अब आप कहते हैं भाई मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है इसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं प्रतिज्ञा आपकी है परमेश्वर ने आपको दी है।
and Go on and take it. God said it's yours. Go get it.
केवल जाकर और फिलिस्तीनियों को मार डालो, एक ओर और दूसरी ओर तक, और सारे हित्ती अमोरियों को बाहर कर दो, उन्हें बस मार डालो, भीतर जाकर इसे ले लो। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, इसे ले लो।
But he didn't say, I'll go and sweep it all out, build up the nice cities and set you down on easy street. He doesn't do that way.
परंतु उसने नहीं कहा अब मैं भीतर जाऊंगा और सबको बाहर कर दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छे नगर बनाऊंगा और तुम्हें वहाँ सरल मार्गों में स्थिर कर दूंगा। वो इस प्रकार से नहीं करता।
He gives it to you and you got something to do. He's good enough to give you land, said he'll help you and be with you. Go take it.
वो ये आपको देता है और आपको कुछ करना है। वो बहुत भला है कि उसने आपको भूमि दी है, कहा वो आपकी सहायता करेगा और आपके साथ होगा, जाओ जाकर ले लो। और यदि आप बीमार हैं, आज रात्रि अपाहिज, अंधे, बहरे, गूंगे, आप जो भी हैं, जाकर ले लो। परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा था, ये आपका अधिकार है, परमेश्वर ने आपको दिया है।
He told him that he would give him that land, send an angel before him to take care of the way, bring him into the place where it was.
उसने उनसे कहा कि वो उन्हें वो देश देगा, उनके आगे आगे दूत भेजेगा ताकि मार्ग में उनकी देखभाल करे, उन्हें उस स्थान पर लाए जहां ये था।
Look at them spies when they went over. Here come 10 of them back to, oh, we can't do it, it's impossible. While we're scientists and we've looked the thing over, it's scientifically impossible, we can't do it.
उन भेदियों को देखिए, जब वे वहां पहुंचे, यहां वे 10 वापस आए, कहा ओ हम ये नहीं कर सकते, ये असंभव है, क्यों? हम लोग वैज्ञानिक हैं और हमने इन चीजों को देखा है वैज्ञानिक रीति से, ये असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते।
But there were two fellows, one of them named Joshua and one named Caleb. They wasn't looking at what the scientific side was, they was looking at what God said, that we can do it. And that's right. And they brought back some evidence that it was a good land.
परंतु वहाँ दो व्यक्ति थे, उनमें से एक का नाम यहोशुआ और एक का नाम कालेब था। वैज्ञानिक भाग क्या कहता है, वे इसे नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है, वे वो देख रहे थे, कहा हम इसे नहीं कर सकते, और ये ठीक बात है। और वे कुछ प्रमाण लेकर आए कि ये एक अच्छा देश था।
I'm so glad of that evidence, aren't you? That is a good land, just above us, and we're on a road tonight. Hallelujah.
और मैं उस प्रमाण से बहुत आनंदित हूँ, क्या आप नहीं हैं, कि हमारे ऊपर एक अच्छा देश है और हम अपने मार्ग पर हैं आज रात्रि। हालेलुया।
और here it was now just before redemption. God required the children of Israel that they be sure to be protected, to kill this lamb and to put the blood on the lintel, the top of the door like this, and each post.
ठीक है, यहाँ वे थे। अब अपने छुटकारे से थोड़ा पहले परमेश्वर की इच्छा थी कि इजरायली बालक की उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, कि इस मेमने को मारें और लहू को चौखट पर लगाएं, दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से, और प्रत्येक अलंग पर। और उन्हें भीतर जाना था और इस मेमने को खाना था, इसका सब कुछ, ध्यान दें, सारा मेमना, ना कि केवल उसका कुछ भाग, उसका सब कुछ खाना था।
Some people say, I'll just take this part. Now, I believe this part, but you've got to take it all. Every bit of it.
कुछ लोग कहते हैं मैं केवल ये भाग लूंगा और मैं केवल इसका भाग विश्वास करूंगा, परंतु आपको सारा का सारा लेना है, उसका सब कुछ। कहते हैं ओ मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु उसके कोड़े खाने से मैं इसके विषय में नहीं जानता।
We want it all. Every bit of it is to be eat, all of it. Some of it gets tough, but we have to eat it anyhow. God said so.
हम सब चाहते हैं, उसका सब अंश अंश खाना है, सारा का सारा, उसमें से कुछ सख्त है, परंतु हमें खाना है जो भी है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है।
Notice the 10th verse. Now, and ye shall let nothing of it remain until morning. And that which remains until the morning shall burn with fire.
अब दसवें पद पर ध्यान दें, और भोर तक उसमें से कुछ भी ना रख छोड़ना, और जो कुछ बच जाए भोर तक उसे आग में जला देना।
And now none of it is to remain. Everything. Now he said, when you eat it, don't eat it raw or sodden, but you must eat it well cooked. Now I like that.
और अब इसमें से कुछ भी नहीं बचाना है। अब उसने कहा, जब तुम इसे खाते हो, इसे कच्चा ना खाना या शोरवेदार, परंतु तुम इसे अच्छी प्रकार से पका कर खाना, और मुझे ये पसंद है।
People trying to eat the word of God and to take it like it was raw, chew on it and spit on it and everything else. Oh, I just can't take it. I can't stand it. It isn't cooked done enough. That's all.
लोग परमेश्वर के वचन को खाने का यत्न कर रहे हैं। वे इसे इस प्रकार लेते हैं जैसे कच्चा चबा जाते हैं और इस पर थूकते जाते हैं और सब कुछ कहते हैं, ओ मैं इसे नहीं ले सकता, मैं इसका पक्ष नहीं ले सकता, ये भली प्रकार से पका नहीं है। यही है उसने कहा, इसे आग से पकाओ। आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। आप पहले हृदय में परमेश्वर को लो और ये आपके लिए पकाएगा। ये ठीक बात है, इसे पका लो, तैयार कर लो, तब ये स्वादिष्ट लगेगा। अब आप इससे अलग नहीं हो सकते। कहें, ओ मैं नहीं जानता कि मेरे लिए है या नहीं। ये बीते दिनों के लिए हो सकता है कि पहले पवित्र आत्मा पालो और देखिए कि फिर दिव्य चंगाई का आपके लिए क्या अर्थ है। देखिए हृदय से लगे धर्म का आपके लिए क्या अर्थ है। जब आपको यहाँ मेमने को पकाने के लिए पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे ही ये आता है, आमीन। ये ठीक बात है। पहले मेमने को पकाओ और पकाने के लिए आपके पास आग होनी ही चाहिए। इसे भूनना है, ओ प्रभु, तभी ये अच्छा है। अधिक समय नहीं हुआ, मैं यहाँ खड़ा हुआ था एक बड़ी भट्टी के पास और मैंने देखा कि आग कितनी गर्म थी और ये और पकाया और पकाया और पकाया। और जैसे जैसे ये गर्म होती गई, धातु का धातु मल सोने से सब ऊपर आ गया और उन्होंने उसे निकाल दिया।
And it heats the fire of the hotter, and it's smelter, and then when it's a ball more, they get some more different stuff, pyrite stuff out of it.
और तब वे आग की कुठाली में और गर्म करेंगे, और तब जब ये अधिक उबलेगा, तब वे विभिन्न चीजें पाएंगे, सल्फर मिली हुई धातु और चीजें इससे।
The first come up was the dirt, like dirt and mud. The next come up was ores, like all something no good, some quicksilvers and all these things. They come up and skim that off.
पहले मिट्टी ऊपर आती है जैसे मिट्टी और कीचड़, फिर कच्ची धातु के समान और कोई अच्छी चीज नहीं, कुछ चांदी चांदी सा और दूसरी दूसरी चीजें वे ऊपर आती हैं और उसे बाहर तलछट को बाहर निकाल देते हैं। नीचे जाते हैं सीधा नीचे और अंतिम चीज सल्फर धातु थी जो उससे बाहर कर देते हैं, ये झूठा सोना है। आप जानते हैं लोगों में बहुत सी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को धोखा देती हैं। जब आप एक मसीही हैं या उनके समान व्यवहार करते हैं जो भी हैं, समझे, परंतु आप पवित्र आत्मा को हर चीज को उबाल कर बाहर करने दें। अपने में से धोखे वाला सोना भी बाहर कर दें।
Many people go out west and they find some of it and they think, oh, they struck a gold mine. It shines better than gold does. But it's fool's gold. That's got no value to it.
नकली वाला एक सोना है. बहुत से लोग पश्चिम में जाते हैं और इसे कहीं कहीं पाते हैं और वे सोचते हैं, ओ, उन्हें सोने की खान मिल गई. ये सोने से भी अधिक चमकता है, परंतु ये नकली सोना है. इसका कोई मूल्य नहीं.
And now they cook that and just skim it all off and just keep cooking it until it's pure gold, boiled down to nothing but 100% gold.
और जब वे इसे पकाते हैं और वे इसकी सारी तलछट बाहर निकाल देते हैं और पकाते रहते हैं और पकाते रहते हैं, जब तक सोने को शुद्ध नहीं कर देते, तब शुद्ध सोने को छोड़ और कुछ नहीं पकाते, केवल 100% सोना.
That's what God does in his church, holds the Holy Spirit on and cooks down in there, so he throws out all the worldliness and the differences and the selfishness and all of this, so he just boils it out of every individual that will come to him. Amen.
और इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी कलीसिया में करता है. उस पर पवित्र आत्मा उंडेलता है और तब तक पकाता रहता है जब तक सारी संसारिकता और मतभेद और स्वार्थ और ये सब, जब तक सब कुछ उबल कर हर व्यक्ति में से जो उसके समीप आएगा बाहर नहीं कर देता. आमीन.
Then you can eat it. Here's another beautiful thought here on the 11th verse.
अब तब आप इसे खा सकते हैं. यहाँ एक और सुंदर विचार यहाँ पर है, 11वें पद में.
And thus shall you eat it with your, listen to this, loins girded. I like that. Shoes on your feet, staff in your hand, you shall eat it in haste. It's the Lord's Passover.
और उसके खाने की विधि ये है, इसे सुनिए, कि कमर बांधे, मुझे ये पसंद है, पांव में जूते पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा. मैं ये पसंद करता हूँ, जबकि आप खा रहे हैं, जाने के लिए तैयार रहना, यही निकास है.
Let's turn over to Ephesians, about the 6th chapter of Ephesians, and look in here what Paul said about get the church ready. 6th chapter of Ephesians, beginning at the 14th verse of the 6th chapter.
हम इफिसियों को निकालें, इफिसियों का 6वां अध्याय, और यहाँ देखिए पौलुस क्या कहता है कलीसिया को तैयार रहने के विषय में. इफिसियों का 6वां अध्याय, 14वें पद से आरंभ करके 6वें अध्याय का.
Stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
So, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर.
And above all things, take the shield of faith. Wherewith you shall be able to quench the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God.
और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो.
See Paul dressing up a man for the battlefield, for the march.
देखिए पौलुस मनुष्य को युद्ध के मैदान के लिए तैयार कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए.
God in beginning at delivering of Israel, he said, now you want to get ready for the march. When you come out of the blood, put on your shoes, gird up your loins, get your staff in your hand, and get ready for the call. I like that.
परमेश्वर ने आरंभ में इसराइल को छुड़ाते हुए अब आपको बढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. जब तुम लहू के नीचे आओ, अपने जूते पहन लो, अपनी कमरे बांध लो, अपनी लाठी अपने हाथ में ले लो और पुकार के लिए तैयार हो जाओ. मुझे ये पसंद है.
A man now when he comes into Christ, he gets his gospel shoes on to preach the gospel. The helmet of salvation on, the breastplate of righteousness girds up his loins.
अब एक मनुष्य जो मसीह में आता है वो अपने सुसमाचार के जूते पहनता है कि सुसमाचार प्रचार करे, उद्धार का टोप पहनकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, अपनी कमर कसकर। अक्सर पुराने सिपाहियों में जब वे लड़ाई के वस्त्र धारण करते थे उनका एक बड़ा पटुका होता था, वे इसे बांधते थे, उनकी कमरों को थामे रहता था, ये ढालें शत्रु के भालों को दूर रखती थी।
What a real lesson that is to us. And when the loins begin to get weak, hang down, the shield, they tighten up on the belt, bring them up tight again.
हमारे लिए ये कितना वास्तविक पाठ है, जब कमर कमजोर पड़ने लगे, ढाल गिरने लगे, तब वे अपने पटुके कस लेते थे, उन्हें फिर से कस लेते थे।
What a perfect picture today when you begin to feel like you're slacking. The devil says, "It's no use. Reach down and tighten up the belt a little bit. Pull up the sword a little tight in the hand and go forward. All right, that be ready for the march."
आज कितना ही सिद्ध चित्र है, जब आप स्वयं को ढीला अनुभव करने लगे या शैतान कहता है इसका कोई लाभ नहीं, नीचे की ओर जाने से थोड़ा सा अपना पटुका कस लें, तलवार को थोड़ा कसे हुए हाथों से खींचें और आगे बढ़ें, इस प्रकार से बढ़ने के लिए तैयार रहें।
Every man walking under that blood that night was commanded to stay there, not go out until the orders come to march.
प्रत्येक व्यक्ति उस रात्रि उस लहू के तले चल रहा है, वहीं रुके रहने की आज्ञा थी, और तब तक बाहर न जाए जब तक आज्ञा न आए कि आगे बढ़ो।
And every man is born of the Spirit of God, comes into Christ. Has everlasting life, puts on his shield, his breastplate, standing ready and forbidden to leave until orders to march.
और प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, मसीह में आता है, उसके पास अनंत जीवन है, अपनी ढाल अपनी झीलम पहने हुए तैयार है, और जब तक आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं मिलती रुका रहता है। ओ ये क्या ही शानदार है, क्या आप आज ये सब पाकर आज रात्रि काम में नहीं लगना चाहते आप
सिपाहियों?
आराधनालय में एक गाना गवाने वाला होता था, हमारे गाने का विषय होता था, युद्ध जारी है ओ मसीही सिपाहियों, कड़े रूप से आमने सामने तैनात रहो, झलकते हुए शस्त्रों के साथ, रंगों के प्रवाह आज गलत और सही आमने सामने हैं, युद्ध जारी है परंतु थके हुए नहीं, ताकतवर हो जाओ और उसकी सामर्थ को थाम लो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, उसका झंडा हमारे ऊपर है, तो अंत में हम जयवंतों का गीत गाएंगे।
Many of them old saints have gone to the grave, but one of these days, yonder in a new world, when they come forth into the promised land, the banner of the cross will be over us and we'll sing the victor song.
उनमें से बहुत सारे संत कब्र में चले गए, परंतु इन्हीं किने दिनों में सामने नए संसार में जब वे प्रतिज्ञा के देश में आते हैं, सलीब का झंडा हमारे ऊपर होगा और हम जयवंतों के गीत को गाएंगे।
When we sit at the wedding supper that night around the table, that great table may be 100,000 miles long with the blood-washed saints sitting around there. I want to go down on the table and shake hands with every one of them. Amen. Just shouting.
जब उस रात्रि हम विवाह भोज में बैठते हैं, उस मेज के चारों ओर वो महान मेज हो सकता है सैकड़ों हजारों मील लंबी, लहू से धुले संत वहाँ चारों ओर बैठे हैं, मैं उस मेज के पास जाना चाहता हूँ और उनमें से प्रत्येक से हाथ मिलाना चाहता हूँ। आमीन। बस चिल्ला रहे हैं।
You want to hear me shout? Wait till you get over there. Watch me. I ain't big enough yet for this.
क्या आप मुझे चिल्लाते हुए सुनना चाहते हैं? तो जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूँ प्रतीक्षा करें। मुझे देखें, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ इसके लिए।
But notice, on the march now, get ready, we're going.
परंतु ध्यान दें, अब आगे बढ़ रहा हूँ, तैयार रहें, हम जा रहे हैं।
Here's a sad picture before we get over to a regular lesson. It's found in the 38th verse. There, listen. And a mixed multitude went up with their flock.
यहाँ एक दुखी दृश्य है। इसके पहले कि हम अपने नियमित पाठ पर आएं, ये यहाँ 38वें पद में पाया गया है। सुनिए, और एक मिलीजुली भीड़ उन लोगों के साथ निकल गई।
Therefore, Israel made a mistake. The supernatural had been done. An unconverted people followed because of the supernatural. Finally, got them into trouble.
यहीं पर इसराइल ने गलती की। एक अलौकिक घटित हो गया। बिना मत परिवर्तित लोग साथ साथ चले। उस अलौकिक के कारण अंत में उन्हें कठिनाई में डाला।
No strangers, no outsiders, no one should take it but those who are circumcised.
और नीचे हम ध्यान देंगे लगभग 42वें 43वें पद में प्रभु मूसा से बातें कर रहा है। कहा कि कोई नहीं, केवल वही जो बलिदान हुए थे बलिदान खा सकते थे, बल्कि केवल वही जिनका खतना हुआ था। कोई परदेशी बाहर का इसे ना खाए, केवल वे जो खतना वाले हैं।
And what a disgrace that we have today, in this day, beloved friends, that when in the church, everybody that belongs to the church takes communion. And that's wrong. Only those who are redeemed, that's all who are worthy.
प्रिय मित्रों, आज के दिन हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है कि जब कलीसिया में प्रत्येक जो कलीसिया से संबंधित है प्रभु भोज लेता है, और ये गलत है। केवल वे जो छुड़ाए हुए हैं, केवल वे जो योग्य हैं।
Isaiah spoke and said, the tables of the law would be full of vomit. Said, who shall I teach doctrine, them that are weaned from the breast?
यशाया ने बोला और कहा कि प्रभु की मेजें उल्टियों से भरी हुई होंगी। कहा, मैं किसको शिक्षा दूंगा, वे जिनका दूध छुड़ाया गया है। कहा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, और जो अच्छा है उसे कसकर पकड़े रहो।
God speaking, knowing that the day that we're living in, that the church would be so politically till we let every sane people come in, long as they have their name on the church book, they were members, they taken communion.
परमेश्वर बोल रहा है, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, जानता है कि कलीसिया इतनी राजनीतिज्ञ हो जाएगी कि वे अंदर आने वाले लोगों को कुछ भी करने देंगे। जब तक उनके नाम कलीसिया की पुस्तक में है, वे सदस्य थे, उन्होंने प्रभु भोज लिया।
Jesus speaking.
और बाइबल ने कहा, वो जो खाता है और इसे पीता है वो अयोग्य और प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। संत यूहन्ना 13वां अध्याय यीशु बोल रहा है।
2 Corinthians 11th chapter, Paul said years later that he that eats and drinks this unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Let a man examine himself, he says, before take. I'm quoting scripture. That's right.
दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पौलुस ने वर्षों पश्चात कहा कि वो जो इसे अयोग्यता में इसे खाता और पीता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य स्वयं को जांच ले। उसने कहा इसके पहले कि वो इसे ले, मैं वचन बता रहा हूँ, ये ठीक बात है। वो जो इसे खाता और पीता, अयोग्यता में होते हुए इसे खाता और पीता है, प्रभु की देह को नहीं पहचानता, स्वयं को दोषी ठहराता है। इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत से रोगी और निर्बल हैं और बहुत से सो गए। निश्चित हो जाएं कि आप प्रभु के साथ ठीक हैं।
Here it is in the shadow that no one but the circumcised, no matter how raw he was, how much he helped the Jewish church, he had to be a proselyte, had to be a real circumcised believer before he could take the communion or even the Passover. Oh, how far we got off the line today.
ये यहाँ छाया में है कि और कोई नहीं, केवल खतना वाले। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना ईमानदार है, उसने कितने यहूदी कलीसिया को कितनी सहायता की है। उसे धर्मांतरित होना ही था। वास्तव में खतने वाला विश्वासी इसके पहले वो प्रभु भोज ले सके या पर्व को खाए। ओ, आज हम उस रेखा से कितनी दूर हो गए हैं। अब हम जल्दी जल्दी, तब आज रात्रि परमेश्वर उन्हें बाहर लेकर आया। अब हम 14वें अध्याय के 13वें पद को निकाल रहे हैं।
God gave them the pillar of fire to go before them. I think they had a picture here tonight, and I say it was reverent. To my honest opinion, while we're here in this group tonight, I believe that is with us tonight. The same pillar of fire that led the children of Israel is going before us, performing the same signs and wonders.
परमेश्वर ने उन्हें अग्नि स्तंभ दिया कि उनके आगे आगे चले। मैं सोचता हूँ कि आज रात्रि उनके पास इसका चित्र है, और मैं श्रद्धा भाव से ये कहता हूँ अपने ईमानदारी के विचार से, जबकि हम आज रात्रि इस झुंड में हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे साथ है। वही अग्नि स्तंभ जिसने इसराइल के बालकों का मार्गदर्शन किया, हमारे आगे आगे चल रहा है, उन्हीं चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को कर रहा है।
And any teacher here or scholar of the Bible knows that the angel that followed Israel and guided them to the promised land was the angel of the covenant, which was Jesus Christ.
और यहाँ कोई भी शिक्षक या बाइबल का ज्ञाता ये जानता है कि वो दूत जो इसराइल के साथ रहा और प्रतिज्ञा के देश तक उनका मार्गदर्शक रहा, वो वाचा का दूत था जो यीशु मसीह था। और आज यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। इस झुंड के आगे आगे है जिसे आप लोग पवित्र शोर मचाने वाला कहना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। जय से जय पर अगुवाई कर रहा है, उसकी महिमा हो। उन दिनों में, उन देशों में वे लोग छोड़े हुए और घृणित और ठुकराए हुए और राष्ट्रों के द्वारा छोड़े गए और सब कुछ कहलाए, ऐसे ही आज सच्चे विश्वासी के साथ है।
You and your churches, you know, when you take a stand for Christ and speak for truth, the whole church says, look at him, he's lost his mind, he's gone crazy.
आप अपनी कलीसियाओं में जानते हैं, जब आप मसीह का पक्ष लेते और सत्य के लिए बोलते हैं, तो सारी कलीसिया कहती है, इसे देखो, वो अपनी समझ खो बैठा है, वो पागल हो गया है, समझे?
Don't pay no attention to that. Follow along. You're all armored up now. The blood's going before you. The Holy Spirit leading you. Just keep moving. Don't pay no attention to what nobody tells you. Just take the power and march on. Beautiful type.
उस पर ध्यान ना दें, पीछे पीछे चलते रहें। अब आप हथियारों से सुसज्जित हैं और लहू आपके आगे आगे है, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है, बस बढ़ते जाएं। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान ना दें, सीधे सीधे कलवरी पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। एक सुंदर प्रतिछाया। अब वे निकल कर बाहर आ गए हैं और अब ध्यान दें, लहू का छुटकारा उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया। अब उनके पास कुछ होना चाहिए था कि उन्हें उस देश में ले जाए। अब वे आरंभ करने वाले हैं, वे बाहर आ गए खतना किए हुए, लहू के तले आए और बढ़ रहे हैं। अब वे किसी चीज पर आ गए हैं, वे वहाँ साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए कि वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, जानते हुए कि उनके पास अनंत जीवन है। परंतु यहाँ वे लोग आ रहे हैं और कठिनाइयाँ आने लगी, यहाँ उनके पीछे फिरौन की सेना आ रही है कि उन्हें ले ले, परेशानियाँ आ गई। सुनिए, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान और हमारी सामर्थ और संकट के समय हमारी उपस्थित सहायता। ओ, मैं आशा करता हूँ आप इसे देखते हैं। देखा, ये यहाँ पर है।
No, listen, 13th verse now, and Moses said unto the people, fear ye not. I love that. After Jesus rose the dead, his words were copied, fear not.
जानते हैं, परंतु सुनिए अब 13वां पद, और मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, मुझे यह अच्छा लगता है। यीशु जब मृतकों में से जी उठा, उसके वचन निरंतर थे, डरो मत। आज कलीसिया के साथ यही परेशानी है, वे डर से मरने पर हैं कि आप असफल होने वाले हैं। जब आप मसीह में हैं तो आप कैसे असफल हो सकते हैं? आप असफल नहीं हो सकते, आपके पास अनंत जीवन है, अधलोक के सारे प्रेत आपको नहीं हिला सकते, आपके पास अनंत जीवन है। यीशु ने ऐसा कहा, असफलता से भयभीत ना हो। आप कहते हैं, भाई मैं डरता हूँ कि मैं धर्मांध हो जाऊंगा, बजाय शांत बैठने के और कुछ ना करने से थोड़ा धर्मांध हो जाऊं, निश्चय ही मैं चाहूंगा। ब्लड्स के विषय में बताया गया, उसके पास एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया और उसने कहा, यहाँ अपने हस्ताक्षर करो। उसने हस्ताक्षर करने के लिए अपनी पेंसिल उठाई, उसने कहा, इस पर तुम्हारी रबड़ कहाँ है? कहा, मैं नहीं जानता, कोई गलती करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता, तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये ठीक बात है, तुम कोई गलती नहीं करते हो, तुम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई हम आगे बढ़ते बढ़ते रहें।
Right, soul is dead to slumber and things are not what they seem.
मैं वहाँ लॉन्ग फेलो को पसंद करता हूँ. मुझे दुख की घड़ियां में ना बताओ कि जीवन केवल एक खाली स्वप्न है और सोने वालों के प्राण मृत हैं. चीजें वैसी नहीं जैसी दिखाई पड़ती हैं.
Yes, life is real and life is earnest and the grave is not its goal. Just the arch of death return is not spoken of the soul.
कहा हाँ जीवन वास्तविक है और जीवन उत्साह है और कब्र उसका उद्देश्य नहीं है. तू मिट्टी से है, मिट्टी में लौट जाएगा, ये प्राण के लिए नहीं कहा गया. हम उठे और कर रहे हैं हृदय से किसी भी संग्राम को, ना कि गूंगे जानवरों के समान हकाए जाते हैं. बहादुर बनो.
Amen. That's what God wants. Rugged, ready soldiers.
लोगों की प्रतीक्षा ना करें कि वे आपको मसीह तक ले जाने में प्रेरित करें. एक पुरुष या एक महिला के समान खड़े हों और उसे स्वीकार करें और जय करते हुए आगे बढ़ें. आमीन. परमेश्वर यही चाहता है, मजबूत और तैयार सिपाहियों.
You might not be weigh 105 pounds, but you can still be ready, brother, and full of power. If you'll just let God have his way.
संभव है आपका वजन 105 पाउंड भी ना हो, परंतु भाइयों आप फिर भी सुस्वस्थ हैं और सामर्थ्य भरे हुए यदि आप परमेश्वर को अपनी तरह से करने दें. मैंने सैकड़ों पाउंड के मनुष्य देखे हैं, परंतु उनमें एक भी अंश पुरुष नहीं है. ये ठीक बात है.
Moses said unto the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord.
ठीक है, ध्यान दें. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, शांत रहो और यहोवा के छुटकारे को देखो.
That's good. Just march on. Don't get scared about nothing. If you accept Christ as your Savior, go on. Brother Brad, I want to baptize the Holy Ghost. Just keep moving. Don't fear.
ये अच्छा है, केवल आगे बढ़ते रहो, किसी भी बात से ना डरो. यदि आपने मसीह को अपने बचाने वाले के रूप में स्वीकार किया है, बढ़ते रहो. भाई ब्रदर, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता हूँ. केवल आगे बढ़ते रहें, डरे नहीं. आप कहते हैं अब मैं बीमार हूँ. भाई बर्नम, में अधिक आगे नहीं बढ़ सकता. चिंता ना करें, केवल आगे बढ़ते जाएं. हमारे यहोवा के छुटकारे को देखो, इसे स्वीकार करो, केवल आगे बढ़ो. ये कैसे होने जा रहा है? डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया. उसने जितना अच्छा हो सकता था किया, परंतु परमेश्वर ने अपना सबसे अच्छा अभी नहीं किया है. ये ठीक बात है.
Just a moment. Listen at him now. All which he will show unto you today for the Egyptians, the assayers, the truth, the troublemaker.
एक क्षण के लिए अब उसे सुने. ठीक है, यहोवा जो आज तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि मिस्री, पारखी, सत्य, कष्ट देने वाले.
Say, brother, if I could just quit smoking, if I could just lay down drinking. If I could just quit my stealing, if I could just quit my doing this, that, and the other, don't worry, just walk on. God will take care of the rest of it.
कहते हैं भाई बर्नम, यदि मैं बस सिगरेट पीना छोड़ दूं, यदि मैं मद्यपान छोड़ दूं, यदि मैं अपनी चोरी छोड़ दूं, यदि मैं अपना ये वो करना छोड़ दूं, परेशान ना हो, केवल बढ़ते जाएं, बाकी की चिंता परमेश्वर कर लेगा.
If I know what I could do, brother Branham, I'd accept Christ right now. Don't you worry, move on. You'll see the salvation of the Lord.
यदि मैं जानता होता कि मैं ये छोड़ सकता, भाई बर्नम, मैं अभी मसीह को ग्रहण कर लेता. आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें, आप प्रभु के उद्धार को देखेंगे.
For the Egyptians who you have seen today, you shall see them again no more forever. Amen. It's going to be settled after a while.
क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे. आमीन. कुछ क्षण पश्चात ये तय हो गया.
The Lord shall fight for you, and you shall be a holder of peace.
यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो।
And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward. I like that.
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, मुझे ये पसंद है।
Don't try to say, well, I joined the church 10 years ago, Brother Branham. I've been a good faithful member. That's fine. I appreciate that. But let's move on tonight. Stop moving on.
ये कहने का यत्न ना करें, भाई मैं 10 वर्षों से कलीसिया का सदस्य हूँ, भाई बर्नम मैं एक अच्छा ईमानदार सदस्य रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, परंतु हम आगे बढ़ें, आज रात्रि परमेश्वर आगे बढ़ रहा है।
The people today here, they go back, they say, well now, science. 150 years ago, there was a science in France that said if a man ever went the terrific speed of 30 miles an hour, gravitation take him off the earth, he'd be gone.
आज लोग यहाँ वे वापस जाते हैं, वे कहते हैं, अच्छा अब विज्ञान 150 वर्ष पहले फ्रांस में विज्ञान था, यदि मनुष्य कभी भयानक गति 30 मील प्रति घंटा से चले तो गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी पर से उठा देगा और वो चला गया। ओ 30 मील प्रति घंटा, वो अब लगभग 1600 मील प्रति घंटे पर जा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विज्ञान ने कभी फिर उस मनुष्य का उल्लेख किया होगा, वो अपने समय में ठीक था, परंतु वे दूसरे दिनों में जी रहे हैं, ये ठीक बात है।
But we preachers, oh no, divine healing. Now let me see what Saint Moody, Finney, Knox, Calvin, some of them said about us. They were all right in their days, but we're moving on, going forward. We got something else.
परंतु हम प्रचारक लोग, ओ नहीं, दिव्य चंगाई, अब मैं देखूं कि संत मूडी, फिने, नॉक्स, कॉल्विन, इनमें से कुछ ने इस विषय में क्या कहा, वे अपने समय में ठीक थे, परंतु हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमारे पास कुछ और है।
Jesus said in the parable of the sower, the sower went forth and sowed seed, and some the enemy come around and sowed some weeds in the wheat. He said, let them grow together.
यीशु ने कहा वहाँ बीज बोने वाले के दृष्टांत में, जब बीज बोने वाला गया और बीज बोया और कुछ शत्रु ने आकर कुछ जंगली दाने गेहूं के बीच में बो दिए, उसने कहा उन्हें एक साथ बढ़ने दो। आप सदा उंगली उठाते हैं कि संसार कितना खराब होता जा रहा है, परंतु आप ये देखने में असमर्थ हैं कि कलीसिया उसी समय में कितनी शक्तिशाली होती जा रही है, वो उठ रही है और मैदान में खड़ी हो रही है। वो जो कि छोटा झुंड है, परंतु भाई परमेश्वर उसके साथ है और वो विजय प्राप्त करने जा रही है, वैसे ही निश्चित रूप से जैसे मसीह मृतकों में से जी उठा। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया कभी भी असफल नहीं होगी, अधलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल ना होंगे। दिखाया कि वे इसके विरोध में होंगे, परंतु वे प्रबल नहीं हो सकते। कलीसिया मसीह के लहू में से होते हुए जय प्राप्त करते हुए जय के निशाने पर जा रही है।
I'm positive of this one thing, that God will have a church without spot, wrinkle or blemish. Amen. I'm so happy about that.
मैं इस बात के विषय में आशावान हूँ कि परमेश्वर की एक बेदाग बेझुर्री वाली कलीसिया है या दोषी। आमीन। मैं इस विषय में इतना आनंदित हूँ।
If I am in that church, amen. Brother Brown, how do you get into it? By letter? No. How do you get into it? By birth. Born into it.
अब यदि मैं कलीसिया में हूँ, आमीन, भाई बर्नम आप उसमें कैसे आ सकते हैं? शब्दों से नहीं, आप उसमें कैसे आ सकते हैं? जन्म लेने के द्वारा उसमें जन्म लें।
I've been in the Glennon family these 45 years. The 6th day this coming April, they never did ask me to join their family. I was born a Glennon. I'll always be a Glennon.
मैं ब्रणम परिवार में हूँ। इस आने वाले अप्रैल के 6वें दिन को मैं 45 वर्ष का हो जाऊंगा और उन्होंने मुझे इसका सदस्य बनने को कभी नहीं कहा। मैं एक ब्रणम जन्मा हूँ, मैं सदा एक ब्रणम रहूंगा।
To the grace of his own beloved son, we accepted him and got eternal life.
यीशु मसीह में मैं मसीही जन्मा, मैं मसीही होऊंगा, क्योंकि चुनावों के द्वारा परमेश्वर ने इसे इसी प्रकार ठहराया। उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा अनुग्रह से बुलाया, हमने उसे स्वीकार किया और अनंत जीवन पाया।
By one handshake, by one membership, by one letter, by one spirit, we're all baptized into one body, Jesus Christ, and there become fellow citizens of the kingdom.
एक हाथ मिलाने के द्वारा, एक सदस्यता के द्वारा, एक पत्र के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया और वहाँ उस राज्य के नागरिक बन गए।
I was thinking today, as I was away praying, at how that this is the day that we're going to have to answer for. I'm not going to have to answer for the generation that was before me, or the generation that will be after me. But in the judgment, I'm to stand with this generation.
आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आज ये कैसा दिन है कि हमें इसके लिए उत्तर देना है। मैं उस पीढ़ी के लिए जो मुझसे पहले थी उसके लिए उत्तर नहीं देना, या वो पीढ़ी जो मेरे बाद होगी, परंतु न्याय में मुझे इस पीढ़ी के साथ खड़ा होना है।
Now I said, look at that woman's picture on the sign, beer drinking, something other said she was breathless or something. I said, yes, and lifeless too.
और मैंने कहा, उधर एक स्त्री का चित्र विज्ञापन में देखिए, बियर पीते हुए, कुछ और कहा कि वो बिना श्वास के थी या ऐसे ही कुछ। मैंने कहा हाँ, और जीवन रहित भी है।
There you are. I said, what a disgrace of all the preaching. I said, sometimes it seems, I told my wife, I said, sometimes it seems it doesn't do any good.
ठीक है, आप उसी स्थिति में हैं। मैंने कहा ये कितनी लज्जाजनक है। सारे प्रचार के साथ मैंने कहा, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने कहा कभी ऐसा लगता है कि इससे कोई भलाई नहीं होती।
But I've got to be the voice of warning anyhow, regardless of what people does about it. I've got to preach the gospel anyhow and give a witness unto the resurrection and the power of Jesus Christ.
परंतु जो भी है, मुझे चेतावनी की आवाज होना है। जो भी हो, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है और पुनरुत्थान की गवाही देनी है और यीशु मसीह की सामर्थ।
Let them forsake it and turn their back. God will judge them at the judgment board. I'm only responsible for preaching and other ministers too who preach the gospel.
उन्हें इसे छोड़ने दो और अपनी पीठ घुमाने दो। न्याय में परमेश्वर इसके लिए उनका न्याय करेगा। मैं इसे प्रचार करने के लिए उत्तरदायी हूँ और दूसरे सेवक गण भी जो सुसमाचार प्रचार करते हैं।
Now, I just love it. Notice, go forward now, and you will see the glory of God. But listen, the 16th verse now, we read this.
अब मैं इसे प्रेम करता हूँ, ध्यान दें, अब आगे बढ़ें और आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। परंतु सुनिए, अब 16वां पद हम इसे पढ़ते हैं।
But lift up the rod. The rod, that was the judgment rod. Now it wasn't Moses' rod, that was God's rod.
परंतु लाठी उठा, वो लाठी, वो न्याय की लाठी थी। अब ये मूसा की लाठी नहीं थी, ये परमेश्वर की लाठी थी।
If you notice Moses, he took that rod, he held it up like his priest's tongue. He held it over the water to turn to blood. It was God's judgment rod.
यदि आप ध्यान देंगे, मूसा, उसने वो लाठी ली, उसने उसे इस प्रकार पकड़ा, कुटकियां आ गईं, उसने इसे पानी के ऊपर किया, वो लहू बन गया, वो परमेश्वर की न्याय की लाठी थी। और वही लाठी, समझे, और उसी लाठी से उसने चट्टान को मारा और चट्टान की एक और दरार आ गई और चट्टान में से पानी निकला।
Now that rock was Christ, and it was God's judgment. The day you there, that day you died, smote Christ to Calvary and paid that bitter, agonizing death. No man never could describe what it was, and never will.
अब वो चट्टान मसीह था और वो परमेश्वर का न्याय था। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। मसीह को कैलवरी पर मारा और उस कड़वाहट का भुगतान किया। दुख भरी मृत्यु, कोई मनुष्य नहीं इसे कभी भी इसका व्याख्यान नहीं कर सका या कभी कर सकेगा। वहाँ परमेश्वर ने सारा दिव्य न्याय उस पर डाल दिया और उसके एक ओर मारा। जब उसकी एक ओर से पानी और लहू और आत्मा हमारे छुटकारे के लिए निकला। कैसे लोगों ने उसके चित्र को रंगा, कभी कभी उसके चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ या कुछ और क्रूस पर, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने उस मनुष्य को त्याग दिया, हर बुराई अशिष्ट बातें जो वे कर सकते थे, परंतु उसे होना था। वो वहाँ पर उच्चतम और संसार में सबसे नीचा जो कभी था या होगा, और तब क्रूस पर नंगा किया गया, घायल किया गया, पीटा गया, लहू लुहान, उपहास उड़ाने वालों का मुंह भरा थूक उसके मुंह पर लटक रहा था, उपहास उड़ाने का ताज सिंहासनों का उसके सिर पर रखा। परंतु वहीं जहां उसने मृत्यु को, नरक को, पाप को, बीमारी को और कब्र को जीता और हम सब का मूल्य चुकाया। कभी कभी ये कहा, वहीं जहां उसने मृत्यु के डंक को निकाल दिया, यही जहां पौलुस ने कहा, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे कीड़े, मधुमक्खी और चीजें इनके पास डंक होता है और वे इसके साथ जहरीले होते हैं, परंतु वे एक बार डंक मारते हैं और वे अपना डंक खो देते हैं। एक समय मृत्यु में भी उसका डंक था, परंतु कैलवरी पर मसीह ने वो डंक मृत्यु में से निकाल दिया। हालेलुया। ओ, जब मैं इसके विषय में सोचता हूँ कि वहाँ उसने मृत्यु में से डंक निकाल दिया, मेरे और आपके लिए मृत्यु का सारा डंक। पौलुस ने कहा, जब वे उसका सिर रोम की कैद में काटने जा रहे थे, उसने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, वापस कलवरी की ओर संकेत किया और वहीं पर मृत्यु का डंक निकाला गया। कब्र तेरी जय कहाँ है? उसने कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें जय देता है। आमीन। ठीक है। लाठी, न्याय और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी।
And the Egyptians shall know that I am the Lord, and I have gotten me honor upon Pharaoh, and upon his chariots, and upon his horses.
और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
And the angel of God, listen, tighten up the harness now. And the angel of God which went before the camp of Israel, he's still here.
तब परमेश्वर का दूत, सुनिए, कार्य में लगे रहने को और कस दिया, और परमेश्वर के दूत ने जो इसराइल के आगे गया वो अब भी यहाँ पर है।
The angel of God that went before the camp of Israel removed and went back behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them, or went up from here and stood back here, a go-between in a time of trouble.
परमेश्वर का दूत जो इसराइल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का स्तंभ उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, यानी यहाँ से जाकर और वहाँ पीछे खड़ा हो गया और संकट के समय बीच में चला गया।
When trouble begins to face you, sickness on the other hand, trouble, the angel of God comes up, goes out between you and the sickness and stands there away, challenging you to take God's word.
जब कठिनाई आपके सामने आती है और हर ओर से बीमारी परेशानी, परमेश्वर का दूत आ जाता है और आपके और बीमारी के बीच आ जाता है और वहाँ मार्ग में खड़ा हो जाता है, परमेश्वर के वचन को लेने में चुनौती देता है।
God had given Israel the promise that they was going to the land. There was a million body of man coming to pursue them and run them down and chop them down like a bunch of animals.
परमेश्वर ने इसराइल को प्रतिज्ञा दी कि वे उस देश में जाएंगे, संभवतः वहाँ लाखों मनुष्य उनका पीछा करते हुए, और उन्हें दौड़ाया कि उन्हें काट डालें जैसे कि पशुओं का झुंड हो। परंतु प्रभु का दूत जो वहाँ उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए था, पड़ाव में से उठा और पीछे जाकर खतरे और उनके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया।
He'll make the way. I just love him for that, don't you?
वो अब भी यही करता है, वो मार्ग निकालेगा। ओ, मैं बस उससे इसके लिए प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते?
He'll make the way for every sick person sitting here right now. He's already made the way. And he's standing between you and trouble.
वो यहाँ बैठे इस समय हर बीमार व्यक्ति के लिए मार्ग निकालेगा। उसने पहले ही मार्ग बना दिया है और वो आपके और दुख के बीच में खड़ा है।
And I know he's here right now. You can call me fanatic if you want to. I'm not responsible for what you say, but I'm responsible for what I say before God.
और मैं जानता हूँ कि वो अब यहाँ पर है, यदि आप चाहें तो मुझे हर धर्मी कह सकते हैं, परंतु मैं जो कहता हूँ परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ।
But he who led the children of Israel, if I have judged it back on that light that you see tonight, or seen on that picture, I suppose it's up the mountain tonight, that same angel of God is in this building right now to do just exactly what Jesus did in that day.
परंतु वो जिसने इज़राइल के बालकों की अगुवाई की, यदि मैंने इसका सही अनुमान लगाया है, उस ज्योति को जो आज रात्रि आप देखते हैं या जो चित्र में आपने देखा, मैं समझता हूँ आज रात्रि उन्होंने उसे बाहर टांग दिया। वही परमेश्वर का स्वर्गदूत आज रात्रि इस समय इस भवन में है, वही करने के लिए जो यीशु ने उस दिन में किया। वो ये पुष्टि के लिए है कि उसने तब क्या किया था, वो अब है और सदा एक सा रहेगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ हमारे और बीमारी के मध्य में खड़ा है, हमारे और मृत्यु के मध्य में खड़ा है।
No wonder David said, "Yea, though I walk through the valleys of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me." Sure.
कोई आश्चर्य नहीं कि दाऊद ने कहा, हाँ यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर निकलूं, तो भी मुझे कोई भय न होगा, तू मेरे साथ है निश्चय ही।
Standing there, the angel of God went before the camp of Israel and removed and went and stood between them and the enemy.
वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, इज़राइल के शिविर के आगे चला गया और हटा दिया और जाकर उनके और शत्रु के बीच में खड़ा हो गया।
And the angel of God is standing tonight between every individual here and the enemy. I know what I'm speaking of.
और आज रात्रि परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ प्रत्येक व्यक्ति और शत्रु के बीच में खड़ा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
I know why I'm standing here now on the platform before this little group of people tonight. I know that God has come and is coming down from glory and standing in this building now.
मैं जानता हूँ जबकि मैं यहाँ प्रचार मंच पर खड़ा हुआ हूँ, आज रात्रि लोगों के इस छोटे झुंड के सामने मैं जानता हूँ कि परमेश्वर घनीभूत हो गया, महिमा से नीचे आ रहा है और अब इस भवन में खड़ा है।
If you only dare to move out on God's word, see if he don't move before you.
यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने का साहस करें, देखिए यदि वो आपके सामने ना चले।
Watch and it came between the camp and the Egyptians. He's coming between you and your sickness. He's standing between you and your sins right now.
ध्यान दें और मिस्रियों और शिविर के बीच में आ गया, वो आप और आपकी बीमारी के मध्य में आ रहा है, वो आपके और आपके पापों के मध्य में खड़ा है ठीक इसी समय। क्यों हम कलीसिया की निकासी पर हैं, मिस्र सदा संसार कहलाया है, और जब इज़राइल उसमें से निकल आया, स्मरण रहे वे वहाँ कलीसिया के सदस्य थे, परंतु लहू और छुटकारे होने के पश्चात वे परमेश्वर के खतना किए हुए हो गए। और आज खतना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, सब स्तफनूस ने कहा, तुम सब हृदय और कानों से खतना रहित, तुम क्यों सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने किया तुम भी वैसा करते हो। पवित्र आत्मा हृदय में खतना करता है, संसार की चीजों को काट रहा है।
It used to be the old fashioned holiness church lived it. Acted like it, lived like it. But today it's just like the rest of the world. It's a disgrace we let on the ball.
ये पुराने ढंग की पवित्रताई कलिसिया ने इसे जिया, उसी प्रकार व्यवहार किया, उसी प्रकार जीवन व्यतीत किया, परंतु आज ये बाकी संसार के समान है। ये लज्जाजनक है, हमने समझौता कर लिया।
Old Brother Spurgeon used to say, an old Methodist preacher friend of mine used to sing a song, we lay down the bars, we lay down the bars, we compromise with sin, we lay down the bars, the sheep got out, how did the goats get in?
बूढ़े भाई स्पर्जन कहा करते थे, एक पुराना मेथोडिस्ट प्रचारक मेरा मित्र एक गाना गाया करता था, हमने अवरोधों को गिरा दिया, हमने अवरोधों को गिरा दिया, हमने पाप से समझौता कर लिया, हमने अवरोधों को गिरा दिया, भेड़ बाहर निकल गई, बकरियां भीतर कैसे आ गईं?
Because you let on the bar, that's it, you let on the standard of Christian living.
क्योंकि आपने अवरोधों को गिरा दिया, यही है, आपने मसीह जीवन के स्तर को गिरा दिया, क्योंकि धर्म विद्यालय में से प्रचारक निकलकर आ रहे हैं और सत्य से समझौता करने को बाहर भेज दिया।
But the Holy Ghost has always been there to condemn sin and is tonight any between the believer and the things of the world. Amen.
परंतु पवित्र आत्मा वहां उन्हें दोषी ठहराने को सदा से है और आज रात्रि वो विश्वासी और संसार की चीजों के मध्य में खड़ा हुआ है। आमीन।
And it came between the camp and the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to thee. So that the one came not near the other all night.
और वो मिस्रियों की सेना और इज़राइल की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए।
Look, the same thing that was given this group of believers, light.
देखिए वही चीज विश्वासियों के झुंड को दी गई है, उजियाला उन्हें अंधा कर रहा है। ठीक है, अपना झटका सहने वाले बख्तर को पहन लें, ये यहाँ आता है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो उजियाले को अस्वीकार करता है अंधा हो जाता है और अंधकार में चलता है, क्योंकि तुम ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकते। आमीन।
God sends ministers to preach the gospel. He sends signs and wonders among men to vindicate it to be the truth. And man rejects it. There's nothing left but darkness for you.
परमेश्वर सेवकों को सुसमाचार प्रचार करने को भेजता है, वो मनुष्यों के मध्य में चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को भेजता है ताकि इसे सत्य प्रमाणित करे, और मनुष्य इसे अस्वीकार करते हैं। अब आपके लिए अंधकार को छोड़ और कुछ नहीं बचा।
Walk in the light while the light is shining, my brother. Receive the light. Christ is the light. He's come to bring life to you.
मेरे भाई, जब तक ज्योति है, ज्योति में चलते चलो, ज्योति को स्वीकार कर लो, मसीह ज्योति है, वो आपके लिए ज्योति लेकर आया।
But those who rejected light receive darkness. And every man and woman tonight who rejects light walks in darkness, not knowing where he's going.
परंतु जिन्होंने ज्योति को अस्वीकार किया, अंधकार को स्वीकार किया है, और आज रात्रि प्रत्येक पुरुष और महिला जो ज्योति को अस्वीकार करता है अंधकार में चलता है, नहीं जानता है कि कहां जा रहा है। वो बहुत सुंदर और लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध भटक रहा है, परंतु आश्चर्य है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे खड़ा होता है।
Notice it. What a marvelous thing here. He was light to one and darkness to the other. The Israelites fine piece.
इस पर ध्यान दें, यहाँ कितनी शानदार चीज है। वो एक के लिए ज्योति है और दूसरे के लिए अंधकार है। वो इजरायली तब मूसा के प्रार्थना करने के पश्चात वे शांति से लेट गए।
And the waters were divided, and the children of Israel went unto the midst of the sea upon the dry ground.
अब ध्यान दें, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले।
If you notice, while the children of Israel who had come out of darkness and accepted the light, when they got in trouble, the light turned back around and they slept all night, and while they were sleeping, God was sending a wind blowing down across the sea, opening up a way of escape.
यदि आप ध्यान देंगे, जब इसराइल के बालक जो अंधकार से निकल आए और ज्योति को स्वीकार किया, तब उन पर संकट आया। ज्योति वापस पीछे घूम गई और वे सारी रात सोए। जबकि वे सो रहे थे, परमेश्वर ने हवा को भेज रहा था जो समुद्र के आर पार बह रही थी, बचने के लिए मार्ग खोल रहा था।
I'm so glad that I've been filled with the Holy Spirit tonight.
मेमने को हालेलुया, मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज रात्रि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ।
Wow, we are sleeping, rejoicing, resting in the promise of God. God promised them to make a way of escape, and while they were resting on this promise, God was down there before them, opening up a way.
जबकि सो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्राम कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की, उनके लिए बच निकलने के लिए मार्ग बनाए, और जबकि वे इस प्रतिज्ञा पर विश्राम कर रहे थे, परमेश्वर वहां उनके सामने था, मार्ग को खोल रहा था। प्रत्येक पुरुष और महिला आज रात्रि जो उन आधारों पर यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, पवित्र आत्मा जबकि आप सो रहे हैं, जबकि आप उसकी प्रतिज्ञा में विश्राम कर रहे हैं।
Maybe you're crippled, maybe you're blind, maybe you can't hear, maybe you can't see, maybe you're sick, heart trouble, cancer or something. Die! Accept the light tonight and rest upon it.
संभव है आज आप अपाहिज हो, संभव है आप अंधे हो, संभव है आपको सुनाई नहीं दे सकता, संभव है आप ना देख सकते हो, आप बीमार हो, हृदय रोग, कैंसर या कुछ मर रहे हो, ज्योति को स्वीकार करें आज रात्रि और उस पर निर्भर करें।
And the wind coming like a rushing mighty wind on the day of Pentecost will move down to that and open up a way for you. Hallelujah! That you'll pass right through that valley of sickness, right back into the land of health again.
और हवा आंधी के समान जैसे पेंतिकुस के दिन आई, वहाँ पर उसमें होती हुई चलेगी और आपके लिए मार्ग खुलेगा, हालेलुया, ताकि आप उसमें से होकर निकल जाएं, बीमारी की घाटी में से फिर से वापस स्वस्थता के देश में। आप उस ठंडे औपचारिक बंधक उदासीन धर्मों में से होकर निकलेंगे, उस पवित्र आत्मा से भरे देश में, प्रसन्न आनंद करते हुए, आनंद से भरा हृदय। परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है और दिखा रहा था, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि सामर्थ के द्वारा छुटकारा है।
He showed the blood back down one thing. He showed his power here by his blood to redemption.
उसने वहां पीछे लहू दर्शाया एक चीज पर, यहां उसने अपनी सामर्थ्य दर्शाई अपने लहू के द्वारा छुटकारे में होकर।
Showed his power to escape death through the blood. He showed his power to make a way of escape by redemption of power.
मृत्यु से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाई लहू में होकर, उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई बच निकलने का मार्ग बनाया छुटकारे की सामर्थ्य के द्वारा।
And today you who have accepted, amen, you who have accepted the blood of Jesus Christ to cleanse you from sin, the power of the Holy Ghost is here to lead you to the baptism of the Holy Ghost.
और आज आप जिन्होंने स्वीकार कर लिया, आमीन, आप जिन्होंने यीशु मसीह का लहू स्वीकार कर लिया ताकि आपको पाप से शुद्ध करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक अगुवाई करने के लिए है।
The power of God is here to transform you from sickness to health. God moving on in the exodus of His church is coming into the blossom where God will gather as the harlot green.
परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है कि आपको बीमार से बदलकर स्वस्थ कर दे। परमेश्वर कार्य कर रहा है अपनी कलीसिया के निर्गमन में, वो अपने पूरे यौवन पर आ रही है जहां परमेश्वर कुछ देर बाद एकत्र करेगा अपने दाने।
Wonderful. Coming out of the darkness into the marvelous light. How we love that. How I do hope that means to my soul tonight.
आश्चर्यजनक है, अंधकार में से आ रहे हैं शानदार ज्योति में, हम इससे कितना प्रेम करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, आज रात्रि मेरे प्राण के लिए क्या अर्थ है।
Friends, you, I'm talking to a man today who just met me while I was out, and he said, I've been trying to tell people that I've changed your life really since you was a kid.
मित्रों, आप आज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो मुझे जब मैं बाहर था तभी मिला, और उसने कहा कि मैं लोगों को ये बताने का यत्न कर रहा हूँ, कहा मैं बहुत बदल गया हूँ बिली जब तुम बालक थे। कहा तुम आया करते थे और मुझे बताया मेरे व्यवसाय के स्थान पर कि मुझे परमेश्वर के साथ ठीक हो जाना चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ ठीक हो जाना चाहिए, और कहा एक प्रकार से मैं तुम पर हंसा, परंतु कहा बिली अब बात बदल गई है, कहा अब मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहते हो, मैंने सोचा परमेश्वर की महिमा हो। उसने कहा मैं इस विषय में दूसरों को बताने का यत्न करता हूँ, और कहा वे विषय को बदल देंगे और हास्य अखबारों के विषय में बातें करते जाएंगे या कुछ और। ओ ये मैं नहीं हूँ, वो अगला व्यक्ति वहाँ कोने में, वो मर सकता है, वो अगला वाला है, संभव है उसका नंबर अगला होगा, नहीं मालूम किसका अगला नंबर किसका है, आज रात्रि आपका हो सकता है मित्र, यही समय हो कि परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर महान पवित्र आत्मा आज रात्रि मृत्यु और जीवन के मध्य में खड़ा है, आज रात्रि यहाँ खड़ा है स्वास्थ्य और बीमारी के मध्य में, मैं जानता हूँ कि मैंने इस विषय में क्या कहा है, ये ठीक बात है।
Right now, this same Holy Spirit that you feel, right? Every born again person's bound to feel that spirit in the room. You can't help it.
Amen.
If you got any life, you know it's there. All right.
ठीक, अब वही पवित्र आत्मा जिसको आप अनुभव करते हैं, प्रत्येक नया जन्म प्राप्त किया हुआ भाग्य है कि पवित्र आत्मा को इस कमरे में अनुभव करे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, यदि आप में कोई जीवन है तो आप जानते हैं कि वो है, ठीक है। कैसे एक चुंबक के समान, जब एक बड़ा चुंबक किसी चीज के पास आता है तो ये हिलना और खिसकना आरंभ कर देता है। क्यों? जितना अधिक पास आता जाता है, जैसे एक बड़ा चुंबक नीचे आता है। यहाँ एक बार हैमोंड इंडियाना में मैं देख रहा था कि वे लोग छीलन फर्श पर पड़ी थी। उन्होंने एक बड़ा महान हैंडल खींचा तो एक बड़ा चुंबक नीचे आ गया। और उन्होंने सारे लोहे की छीलन फर्श के बीच में से साफ कर दी, और जैसे ही ये पास से निकलकर सारी छीलन जो चुंबक से चुंबकीय हो गई थी लोहे की, सीधी उस पर आई और चुंबक के साथ चली गई, और उन्होंने उसे अचुंबकीय कर दिया और कोठाली में गिरा दिया और फिर से ढाल दिया। वहाँ बहुत सारी एल्यूमिनियम की छीलन पड़ी रह गई। मैंने कहा ये क्यों नहीं गई? उसने कहा ये चुंबक से चुंबकीय नहीं हुई। मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने कहा लोहे का ये टुकड़ा, कहा यदि आपने ध्यान दिया ये नीचे बोल्ट से जड़ा हुआ है। और मित्रों आज रात्रि ये बहुत सारे लोगों के समान है। आप कलीसिया के सदस्य हो गए हैं परंतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से चुंबकीय नहीं हुए, तो फिर आपको किसी चीज ने बांध रखा है, कुछ भिन्न ने आपको जकड़ रखा है। परंतु इन्हीं के दिनों में एक महान चुंबक पूर्व दिशा से आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जो इस राष्ट्र को साफ कर देगा और प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह में मरा है उसके साथ जाने के लिए जी उठेगा। और ये पुरानी देहें बदल जाएंगी और उसकी समानता में हो जाएंगी, उसकी अपनी महिमा युक्त देह के समान, जहाँ पर हम सदा सदा के लिए बीमारी से स्वतंत्र, बुढ़ापे से स्वतंत्र, हर चीज से स्वतंत्र होकर जिएंगे और परमेश्वर की महिमा में, ताकि उसकी उपस्थिति में सदा जीवित रहें। आमीन। ये आपको भयभीत ना करे। अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है, मुझे निश्चय ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। यद्यपि कीड़े मेरे शरीर को नष्ट कर दें, तो भी मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा, जिससे मैं स्वयं देखूंगा, मेरी आंखें उसे देखेंगी और दूसरा नहीं।
Don't think I'm crazy. I'm not. If I am, just let me alone. I'm more happier this way than it was the other way. Yes, sir. Just let me stay this way.
मत सोचिए कि मैं पागल हूँ। मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दें। मैं इस प्रकार से अधिक आनंदित हूँ बजाय किसी और के, और तरह के। जी हाँ श्रीमान, मुझे ऐसे ही रहने दो।
Oh, sure, crazy to the world. All the things that the world calls crazy, God calls blessed. Yes, to lose your mind to this world. Because why? You're not of this world.
Oh, निश्चय ही पागल। संसार के लिए वे चीजें जिन्हें संसार पागल कहता है, परमेश्वर उसे धन्य कहता है। आपको स्वयं को खोना होगा इस संसार के लिए। क्यों? तुम इस संसार के नहीं।
When you cross over that separating line, you become fellow citizens of the kingdom of God. Oh my! How good is it? Why? You become a new creature. Oh my, change from this what you are now.
जब अलग करने वाली रेखा को पार कर देते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के अनुयायी हो जाते हैं। ओ प्रभु, ये कितना भला है, क्यों तुम एक नई सृष्टि बन गए। ओ प्रभु, जो अब है उससे बदल जाते हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। अब क्या हम स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हैं, ना कि बैठेंगे सहस्र शताब्दी में। हम अब हैं, ठीक अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इस समय हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, ना कि केवल कलीसिया में मसीह यीशु में।
The resurrected Lord Jesus is here. He's sharing his power. He's sharing his redemption power. He's sharing the exodus. He's sharing the bringing of the church member into fellowship with him.
जीवित हो उठा प्रभु यीशु यहाँ है। यहाँ वो अपनी सामर्थ में है। वो यहाँ अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ में है। वो यहाँ निर्गमन के लिए है। वो यहाँ प्रत्येक कलीसिया के सदस्य को अपनी संगति में लाने के लिए है। वहाँ प्रत्येक पापी को कोई मतलब नहीं आप कितने नीचे हैं। वो यहाँ अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को आपके जीवन में और आपको नई सृष्टि बनाने के लिए है। यहाँ कुछ वर्षों पहले संसार के सारे धर्मों का मिलन हुआ। मैं विश्वास करता हूँ लंदन इंग्लैंड में या कहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, परंतु जब वे विभिन्न कलीसियाओं के विषय में बात कर रहे थे, मुसलमान, बुद्धा के लोग और आदि आदि, एक साधारण एक व्यक्ति जो अमेरिकन होलीनेस चर्च का प्रतिनिधि था, मैं विश्वास करता हूँ जॉन विल उसका नाम था, मैं विश्वास करता हूँ यही नाम था। इसलिए जब वो खड़ा हुआ, उसके बोलने का समय था। इस स्थान पर सारे धर्मों के प्रतिनिधि थे। इस बड़े जमघट में उसने महिला मिकाबी की कहानी सुनाई कि वो कितनी नीच थी।
Got arrested in Oklahoma with a cigar in her mouth, driving a broken speed law, going through the streets with a stagecoach. She had done so many murders and so filthy and so honoring until when they went to tar and feather, they wouldn't put their hands on her, afraid to be polluted.
ओखामा में उसके मुंह में सिगार था। उसे गिरफ्तार किया गया, गति के नियम को कार चलाने से तोड़कर बग्गी गाड़ी के साथ गली में से निकल रही थी। उसने बहुत सी हत्याएं की थीं, इतनी गंदी थी और इतनी नीच, यहाँ तक कि जब वे उस पर तारकोल और पंख चिपकाने गए दंड के रूप में, उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, डरते थे कि दूषित ना हो जाए।
And when he got the story told in such a dramatic way, the listener was sitting on the end of his seat.
और जब उसने कथा को एक नाट्य ढंग से सुनाया, जब तक कि प्रत्येक सुनने वाला अपनी कुर्सी पर शांत था।
He said, "Gentlemen, other religions of this world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee?" Nobody said a word.
उसने कहा, संसार के धर्म के सज्जन लोगों, क्या आपके धर्म में कुछ है जो इस मिकाबी स्त्री के हाथों को शुद्ध कर सके। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वो हवा में जोर से उछला, अपनी अपनी एड़ियां आपस में टकराई और हाथों से ताली बजाई। उसने कहा कि केवल यीशु मसीह का लहू उसके हाथों को शुद्ध कर सकता है, परंतु वो उसके हृदय को भी शुद्ध करेगा। आमीन, ये ठीक बात है। यीशु मसीह का लहू लुईविल की केंटकी के सबसे नीच वेश्या को लेगा और उसे एक संत बनाएगा, वो एक शराबी को उसके स्थान से लेगा और उसे एक सज्जन पुरुष बना देगा और परमेश्वर का संत।
Don't you think tonight it's about time for you to consider this Lord Jesus before your last chance is taken?
राज्य के मेरे साथी नागरिकों, केंटकी और इंडियाना के मेरे साथियों और आसपास के लोगों, क्या आज रात्रि आप नहीं सोचते कि ये यीशु मसीह पर विचार करने का समय है इसके पहले कि आपका अंतिम अवसर ले लिया जाए?
When you see the church going in this great exodus, see the pillar of fire leading before us, standing performing miracles and signs.
आप देखते हैं कि कलीसिया अपने निर्गमन पर जा रही है, देखते हैं कि अग्नि स्तंभ हमारे आगे आगे चल रहा है और चमत्कार और चिन्ह दिखा रहा है। आज रात्रि वो यहाँ पर अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ में है, वो यहाँ पर प्रत्येक पापी को बचाने और हर पिछड़े हुए को बचाने, वो यहाँ हर बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए है। वो संपूर्ण सुसमाचार है और हम संपूर्ण सुसमाचार प्रचार करते हैं, पूरे मेमने को खाते हैं, उसे पवित्र आत्मा में भूना है और जानते हैं कि ये खाने की अच्छी वस्तु है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बांटा है कि ये वास्तव में अच्छा है। चख कर देखो कि प्रभु भला है, ये चट्टान के मधु के समान स्वादिष्ट है। हमारा प्रभु यीशु यहाँ पर अपने प्रेम और सामर्थ में है, अपने छुड़ाने की महान आशीषों में। ओ, वो किस प्रकार से आज रात्रि कलीसिया और पाप के बीच में खड़ा है, आपके और न्याय के बीच लहू बह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अधिक समय नहीं हुआ मैं ओहियो में एक स्थान पर गया जहां मुझे न्याय के विचारों को अपने विषय में सुनना था। मैं एक छोटे से डंकर्ड खान पान ग्रह में खा रहा था, हमारी एक महान सभा थी, मुझे शहर से दूर कुछ मीलों पर एक छोटे मोटल में ठहरना था। मैं डंकन रेस्टोरेंट में खा रहा था, भले अच्छे लोग, और रविवार को वे बंद करके चर्च को जाते हैं, मुझे छोटे साधारण अमेरिकन स्थान पर खाना खाने को जाना पड़ा।
When I walked into the door, to my surprise, there stood a state police with his arm around a girl playing the slot machine. Now gambling is illegal in Ohio. And there the lawman himself breaking the law.
जब मैं वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर एक राज्य पुलिस का व्यक्ति एक लड़की के चारों ओर हाथ डाले खड़ा था और संगीत के यंत्र को चला रहा था। ओहियो में जुआ खेलना अवैधानिक है और वहां कानून का व्यक्ति स्वयं कानून तोड़ रहा था। और संभवतः वो मेरी आयु का था, संभव है विवाहित होगा, कहीं परिवार होगा, एक नव युवती के हाथ में हाथ डाले वहां खड़ा था। मैंने रेस्टोरेंट में दृष्टि दौड़ाई, कुछ लड़के वहां बैठे हुए पी रहे थे और युवा स्त्रियों के व्यवहार सभ्य नहीं थे।
There sat an elderly lady, somewhat around 58, 60 years old, old as my mother, sitting there, skin all wrinkled up, a little bitty clothes on, and all the turbans.
मैंने देखा कि जहां मैं बैठा था वहां दहनी ओर एक घेरा सा जहां मैं बैठने को था, वहां एक बूढ़ी स्त्री लगभग 58-60 वर्ष की बैठी थी, वहां बैठी थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, थोड़े से कपड़े पहने हुए, ये भयानक था।
And her toenails painted purple, lips painted purple. A harvest looking sight. You ever see her hair cut real short and straightened up like that? And she was drinking.
और उसके पांव के नाखून बैंगनी रंग के थे, उसके होंठ बैंगनी रंग के, भयानक दृश्य जो आपने कभी देखा। उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए, इस प्रकार से बिखरे हुए, और वो पी रही थी।
There's the two men with her sitting there, horribly looking drunk. One of them laying across the plate of the table.
वहाँ दो पुरुष उसके पास बैठे हुए थे, भयानक दिख रहे थे, पिए हुए। उनमें से एक टेबल की प्लेटों पर पसरा हुआ था।
And when they excused themselves and went out to the restroom, I said, "Oh God, how can you stand it? How can you look at such as that?"
और जब वे वहाँ से उठकर बाहर विश्राम के कमरे में आ गए, मैं वहाँ खड़ा हुआ। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, आप ये सब कैसे सहन कर रहे हैं? आप इस प्रकार का ये सब कैसे देख रहे हैं?
Well, even in my heart, man, as bad as I am, it's still I wonder if my little Sarah and Rebecca will have to raise up in such a generation to see that coming on. Lord, why don't you just wipe it off the face of the earth? Why don't you just do it, Lord?
जब मैं अपने हृदय में मैं इतना खराब, तभी मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी सारा और रेबेका को, जो आने वाली पीढ़ी है, ऐसे में कैसे उनका पालन पोषण करूंगा? प्रभु, क्यों नहीं आप इस सब को पृथ्वी पर से साफ कर दें? मैंने सोचा, प्रभु, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते? मैं वहां बैठ गया और बस रोना आरंभ कर दिया। मैंने दर्शन देखा, मैंने देखा कि संसार हवा में घूम रहा है और संसार के चारों ओर मेघ धनुष है।
And someone that was speaking to me said that's the blood of Jesus Christ around this world that keeps him from destroyed. If God can see sin the day you eat thereof, that day you die.
और वो जो मुझसे बोल रहा था कहा कि संसार के चारों ओर ये यीशु मसीह का लहू है जो संसार को नष्ट होने से बचाए हुए है। यदि परमेश्वर पाप को देख सके, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे।
Every man under that blood there has a, is a free moral agent to take your choice. But if you ever die and your soul soars beyond the mercy of that blood, you're already judged before you get there. There's nothing left for you.
वहाँ प्रत्येक मनुष्य लहू के नीचे है एक स्वतंत्र इच्छा कि आप अपना चुनाव करें। परंतु यदि आप कभी मरे और आपका प्राण अनुग्रह के लहू से दूर हुआ, तो आप इसके पहले वहां पहुंचे, आपका न्याय हो गया, आपके लिए कुछ नहीं बचा।
Then I see myself. I see my Lord Jesus standing there with a crown of thorns on his head and the tears running down mixed up with blood as it washed off of his beard.
तब मैंने स्वयं को देखा, मैंने अपने प्रभु यीशु को वहां सिंहासन के ताज को पहने वहां खड़े हुए देखा, और आंसू लहू में मिले हुए बह रहे थे जैसे कि उसकी दाढ़ी को धोया हो।
And I seen my sins coming before him, and every time they would come before him, I get so he's shaking the thorns, he's shaking his brow more, he's staggered back, he says, "Father, forgive him. He don't know what he's doing."
और मैंने देखा कि मेरे पाप उसके सामने आ रहे हैं, और हर बार उसके सामने इस प्रकार से आते हैं जब तक कि वो हिल ना जाता, और कांटे उसकी आंखों के ऊपर माथे में और धंस जाते। वो पीछे डगमगाता और कहता, पिता, इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। और मैं फिर से कुछ करता और उसका लहू कार के बम्पर के समान जो कार को बचाता है, मुझे परमेश्वर के क्रोध से बचा रहा था अयोग्य होते हुए।
Now come to him slowly, knelt down to him. I said, look down and lean from him. There was an old book of sin in my name wrote across the top. I said, Lord, will you forgive me?
और मैं उसके पास धीरे से आया और उसके सामने घुटने टेके मैंने कहा, वहां देखा मेरे सामने वहां पापों की एक पुरानी पुस्तक और मेरा नाम उस पर लिखा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? उसने प्रेम भरी दृष्टि से कहा, निश्चय ही, अपनी एक ओर से हाथ बढ़ाकर लहू लिया और उस पर लिखा, क्षमा कर दिया गया, और उसे पीछे भूल जाने वाले समुन्द्र में फेंक दिया।
He said, now, I said, thank you, Lord. He said, now, I forgive you and you're condemning her. Oh, that changed the picture for me.
उसने कहा, अब मैंने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद हो. उसने कहा, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो. ओ, मेरे लिए चित्र बदल गया. मैं उससे बाहर आया, मैं वहाँ गया और उसके पास बैठ गया और बातें करने लगा, और उसका जीवन पीछे कठिनाइयों से भरा हुआ था. मैंने कहा, क्या आप कभी भी मसीह नहीं थी? उसने कहा, मेरा पालन पोषण मसीह परिवार में हुआ. और मैंने कहा, क्या हुआ? उसने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार के विषय में बताया और कैसे बालक और आदि आदि. मैंने कहा, इन सारे वर्षों में क्या आप जब से परमेश्वर से मिली आप कभी भी शांति से नहीं रही? उसने कहा, श्रीमान, ये सच है. मैंने कहा, क्या आप उसे अभी स्वीकार करेंगी? उसने कहा, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा, वो इस समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है.
And out of that booth there on the floor knelt down before that audience of people, slot machines, pop burgers, cursing stops and everything else. I lifted up my hands, my poor wrinkled hands, and led her to Jesus Christ.
और उस मंडप के बाहर वहाँ फर्श पर और लोगों की सुनने वाली सभा के सामने घुटने टेक दिए. गाना सुनाने वाली मशीन रुक गई, भद्र श्राप रुक गया और सब कुछ. और मैंने अपने हाथ उठाए और मेरे हाथ और वे बेचारे झुर्रीदार हाथ और यीशु मसीह के पास अगुवाई करके ले गया. ये ठीक बात है.
Look, Jesus, I don't care who what you've done, how black your sins are, how smutty your life is. God's standing tonight knocking at your heart's door to forgive you. No matter who you are, let's bow our heads a minute. Just here comes your heart in here with you.
मित्रों, यही बात है. मत देखिए, यीशु, मैं चिंता नहीं करता कि आपने क्या किया, आपके पाप कितने काले हैं, आपका जीवन कितना मैला है. परमेश्वर आज रात्रि खड़ा हुआ आपके हृदय पर खटखटा रहा है कि आपको क्षमा कर दे. कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं. आइए हम एक मिनट के लिए अपने सिरों को झुकाएं. बहन, आप यहाँ ऑर्गन पर आ जाएं. क्या आप आएंगी?
Heavenly Father, oh, I pray that you will just now, while the Holy Spirit is moving in the building, let us seek first the kingdom to find favor with you, and then I believe you'll heal the sick.
स्वर्गीय पिता, ओ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब, जबकि पवित्र आत्मा यहाँ भवन में घूम रहा है, हम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करें कि आपका समर्थन प्राप्त करें. तब मैं विश्वास करता हूँ कि आप रोगियों को चंगा करेंगे.
But right now, Father, while feeling that there's a great deep interest and a conviction, people knowing that your church is in the exodus and we're going on towards judgment.
परंतु ठीक अब पिता, जबकि अनुभव कर रहे हैं एक महान गहरी रुचि और एक सहमति, लोग जानते हैं कि आपकी कलीसिया निर्गमन में है और हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं.
Not knowing, but in the morning, someone may come to the bedside and they're willing and gone. This time tomorrow night may be in a morgue somewhere and I'm told I got an eternity.
नहीं जानता, परंतु प्रातः कोई पलंग के पास आ सकता है और हम वहाँ पड़े हुए चले गए. इस समय कल रात्रि हो सकता है, कहीं मुर्दा घर में हो और हमारे प्राण वहाँ दूर अनंतता में हो. ओ परमेश्वर, ये अंतिम घड़ी हो सकती है, ये अंतिम अवसर हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा.
Many, no doubt, are sitting here. Men and women whose desires, who've lived just a normal, good life, but never been born again, doesn't know what it means to be filled with the Holy Spirit. A complete surrendered life.
कोई संदेह नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हैं, पुरुष और महिलाएं, जिन्होंने इच्छा की, जिन्होंने अच्छा साधारण जीवन व्यतीत किया, परंतु कभी भी नया जन्म नहीं पाया, नहीं जानते कि पवित्र आत्मा से भरना इसका क्या अर्थ होता है. एक पूर्णतः समर्पित जीवन सारी जंजीरों के साथ सारा संकोच उनसे ले लिया और परमेश्वर का आत्मा उन्हें अपने अनुग्रह में बपतिस्मा देता है। पिता प्रिय, क्या आज रात्रि आप अपने प्रिय बालकों के नाम में यीशु हर हृदय के पास जाकर और अब इस समय बात करें?
And may they, in the simplicity of their heart, raise up their hearts to Thee. Raise their heart and say, "Here I am, Jesus. Take me now, just as I am, and mold me and make me something different. Make me the kind of man You'd have me to be."
और होने पाए कि वे अपनी हृदय की सादगी में अपने विचारों को तेरे पास उठाएं, अपने हृदय उठाएं और कहें, यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जैसा हूँ वैसा ही ले ले और मुझे ढाल और भिन्न बना दे, मुझे एक प्रकार का मनुष्य बना दे कि मैं आपका हो जाऊं।
All through my life you talked to me, you spoke to me, you tried to get me to do different, you tried to make me to make that stranger, but now the day is far spent, Lord, with me, but I'm ready to come now.
मेरे सारे जीवन भर आपने मुझसे बातें की हैं, आप मुझसे बोले, आपने मुझसे भिन्न करवाना चाहा, आप मुझसे चाहते थे कि मैं समर्पित हो जाऊं, परंतु अब दिन बहुत बीत चुका प्रभु मेरे साथ, परंतु अब मैं आने के लिए तैयार हूं।
Granted, Father, while mercy is calling before judgment, the exodus of the church is leaving Egypt. May they come go along with the great group that are called out.
पिता इसे ग्रहण करें, जबकि न्याय से पहले अनुग्रह बुला रहा है, कलीसिया का निर्गमन मिस्र को छोड़ रहा है, होने पाए कि वे आए और उस बड़े झुंड के साथ चलते जाएं, बुलाए हुए, हम ये उसके नाम में मांगते हैं। और जबकि प्रियो हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं और आंखें बंद और मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अचरज है यदि आप अपने हाथ उठाकर कहें, भाई ब्रनम, आप मुझे स्मरण रखें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक शब्द जो आप कह रहे हैं वो यीशु मसीह के विषय में सत्य है और हम सबको पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है और मैं अभी नहीं हूँ।
I've been a church member, or maybe you haven't been at all. Maybe you've been a sinner, never have accepted Christ. Or you've been a member of the church and haven't been born again. Would you raise up your hand and say, "Remember me, Brother Branham, in your prayer. I want to be right."
मैं एक आराधनालय का सदस्य रहा हूँ, या हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ना रहे हों, संभव है आप एक पापी रहे हों, मसीह को कभी भी ग्रहण ना किया हो, या आप एक कलीसिया के सदस्य रहे हो और नया जन्म प्राप्त ना किया हो, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहेंगे, भाई बरना, मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना, मैं ठीक होना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको और आपको और आपको आपको और आपको मेरे भाई, और आपको बहन, और आपको भाई, आपको 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 भाई बहन, मैं देखता हूँ, ओ मेरी बाई ओर उधर कितने हैं, अपने हाथ उठाए, कहें, भाई बहना, मुझे स्मरण रखें, मैं जन्म लेना चाहता हूँ। अब स्मरण रखें, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो मैं उतनी ही निश्चित रूप से जानता हूं जितना कि मैं यहां इस मंच पर खड़ा हूं कि पवित्र आत्मा यहां हृदयों से बात कर रहा है। मित्रों, हो सकता है मैं आपके लिए विशेष हूं, परंतु मैं हर धर्मी नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या बोलता हूं। यदि मैं जानता हूं कि आपकी क्या परेशानी है और आपका क्या रोग है, और परमेश्वर आपके लिए मेरी प्रार्थना सुनता है। और ठीक यहाँ इस भवन में लोग बैठे हैं जो चंगे हुए हैं कैंसर से और अंधेपन से और बहरेपन से और अपाहिज और सब बातें। संसार में चारों ओर सभाओं को देखें, अब आपके विषय में क्या है, अब इसके विषय में क्या है। यदि वो मेरी प्रार्थना इस सब के लिए सुनेगा तो क्या वो आपके प्राणों की हालत के लिए नहीं सुनेगा? यदि वो मुझ पर ये प्रकट करेगा कि आपकी परेशानी कहाँ है तो क्या वो मुझे अब ये भी ना बताएगा कि परेशानी क्या है?
How many more raise your hand and say, Brother Branham, remember me. I want to this time ask God to be merciful to me. God bless you and you and you, you again, oh my, just all over the building, everything.
कितने और अपने हाथ उठाएंगे कहेंगे, भाई बर्नम मुझे स्मरण रखें, मैं चाहता हूं कि अब परमेश्वर से मांगा जाए कि मुझ पर दयावान हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको और आपको 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 फिर से ओ प्रभु सारे भवन में चारों ओर। जबकि आपने अपने सिरों को झुका रखा है, मुझे आश्चर्य है यदि आप जिसने अपने हाथ उठा रखे हैं थोड़ा सा अनुग्रह और कहें, प्रभु मुझे इतना अनुग्रह मिला है कि मैं अपना हाथ उठा सका, इतना अनुग्रह और दे कि जब वो प्रार्थना कर रहा है तो मैं खड़ा हो जाऊं। यदि वो आज दिन निकलने के पहले मेरे लिए आता है, प्रभु तो आपके लिए मेरा ये चिन्ह है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं आपसे किसी दिन मिलना चाहता हूँ। ये खकार मेरी नली में आ जाएगी और मैं मरते हुए तकिए को दबा रहा हूँगा, डॉक्टर मेरे पलंग के पास से चला जाएगा, तब कुछ नहीं हो सकेगा। परमेश्वर मेरे प्राण पर अनुग्रह करे, जबकि मृत्यु का ठंडा कोहरा यहाँ कमरे में तैर रहा है, होने पाए कि सही उनकी पुरानी नाव आकर मुझे यहाँ से ले जाए। प्रभु मैं खड़ा होने जा रहा हूँ, बहुत ही अनुग्रह चाहिए, परंतु मुझे कोई हिला रहा है, मैं खड़ा हूँ। भाई प्रभु आपको आशीष दे। कोई और खड़ा होकर और कहेगा, प्रभु मैं खड़ा हूँ, भाई परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, खड़े रहें। हर जो इस प्रार्थना में स्मरण करवाना चाहता है कि आपके प्राणों का उद्धार हो, क्या आप खड़े होंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, नवयुवक परमेश्वर आपको आशीष दे, श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई मेरी बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, आप भाई। अब कोई और खड़ा हो और कहे, भाई वर्णम मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, किसी चीज ने मुझे खड़े होने को कहा और मैं खड़ा हूँ। क्या आप ये करेंगे? बस अपने पांव पर खड़े हो जाएं, बस परमेश्वर को इतना ले लें। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ अधिक है, महिला परमेश्वर आपको आशीष दे, ये ठीक बात है। बेचारी माँ अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए उठने का यत्न कर रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, क्या आप नहीं आएंगे? फिर खड़ी हो जाएं। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। बूढ़ी महिला वहां खड़ी हुई हैं और वास्तव में बूढ़ी हैं, ये जानते हुए कि इन्हीं दिनों में उसे परमेश्वर का सामना करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब अगला कौन खड़ा होता है? कहते हैं मैं खड़ा हूंगा। प्रार्थना के लिए खड़े रहें। कोई और, मैं अनुभव कर रहा हूँ कोई है जो खड़ा होना चाहता है। इसे अब ना टालें, बस खड़े हो जाएं। क्या आप करेंगे? एक आप जो परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये ठीक बात है। क्या कोई और? परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। जी हाँ श्रीमान, कम से कम तीन लोग और हैं। मैं उनको सीधा सीधा देख रहा हूँ, खड़ा होना चाहिए क्योंकि वहाँ परमेश्वर का दूत स्वर्गदूत खड़ा है। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, ये ठीक बात है। अब ठीक है भाई, इसके विषय में क्या है? ठीक है, और प्रभु का स्वर्गदूत खड़ा है। मैं जानता हूँ, मैं इसे देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि किसी को अब खड़ा होना चाहिए। मैं एक मिनट और प्रतीक्षा करूंगा। परमेश्वर करे, जानिए कि वो आपके हृदय पर दबाव डाल रहा है। मेरे मित्र, वो वहाँ पर खड़ा है। ये वही है जो आपसे खड़ा होने को कह रहा है। क्या आप ये नहीं करेंगे? केवल खड़े होकर उसे स्वीकार कर लें। अभी ठीक है। क्या आप निश्चित हैं? यदि परमेश्वर आज रात्रि की सभा में आपको बुला ले, ये उपदेश, ये निमंत्रण आपको वहां से मिलने जा रहा है। जब आप मरते हैं, कि आपने इस विषय में क्या किया? यदि आप पक्के निश्चित नहीं हैं, तो अब खड़े हो जाएं, ताकि वो आपको देखेगा कि स्वीकार करना चाहते हैं कि ज्योति में चलें।
Our kind Heavenly Father, these thy dear children, softened hearts, the word fell in their heart tonight. Faith cometh by hearing and hearing of the word.
अब हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, ये तेरे प्रिय बालकों ने अपने हृदयों को मुलायम किया है। वचन आज रात्रि उनके हृदय में गिरा है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। और वे सुन सकते हैं, और आपने उनके हृदयों को कोमल कर दिया है। बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां, लड़के और लड़कियां तुझे अपना प्रिय बचाने वाला और अगुवा स्वीकार करते हैं।
May the angel of God who is here now tonight, may he guide them through life. May they be guided to Calvary just now in their heart and accept Jesus as their Savior.
और होने पाए परमेश्वर का स्वर्गदूत जो आज रात्रि यहाँ पर है, वो उन्हें जीवन भर उनकी अगुवाई करता रहे। होने पाए अभी उनका मार्गदर्शन क्रूस कलवरी पर होने पाए, उनके अपने हृदय में और यीशु को अपना बचाने वाला स्वीकार कर लें।
And may the Holy Spirit, through the blood of Christ, come down upon their souls and take all the indifference away and fill them with the baptism of the Holy Spirit.
और होने पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लहू से होते हुए नीचे उनके प्राणों पर आए और सारे भेद निकाल दे और उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दे।
May this be the greatest night of their life. We know it is, for tonight they're receiving you.
होने पाए ये रात्रि उनके जीवन की महान रात्रि हो। हम जानते हैं कि ये आज रात्रि के लिए है। ये लोग आपको ग्रहण कर रहे हैं, इसे प्रदान करें प्रभु इसी समय।
And may they go home from here tonight, happy and rejoicing, praising God with all their hearts. I pray this blessing through Christ Jesus' name.
और आज रात्रि ये अपने घरों को प्रसन्न और आनंदित होते हुए परमेश्वर की महिमा अपने पूरे हृदय से करते हुए जाएं। मैं इस आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ। अब होने पाए प्रभु आपको आशीष दे जैसे कि आप बैठे हुए हैं।
Just raise your hand, you know something happened. God bless you. God bless you. That's right. It has to, friends. It has to.
अब मैं आप लोगों से पूछूं, प्रत्येक से जो खड़े हुए थे और आप जानते हैं कि जब आप खड़े हुए थे आपको कुछ हुआ, अपने हाथ उठाएं, बस अपने हाथ उठाएं। आप जानते हैं कुछ हुआ, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक बात है, इसे होना है मित्रों, ये होना है।
The same angel that I speak of, going right through this building here. The same angel, Lord, a pillar of fire. I've been preaching the last 5 or 10 minutes under that inspiration.
मैंने खड़े हुए यहाँ अभी देखा वही स्वर्गदूत जिसके विषय में मैंने कहा यहाँ इस भवन में जा रहा है प्रभु का वही स्वर्गदूत अग्नि स्तंभ में पिछले 5 या 10 मिनट से प्रचार कर रहा हूँ उसी प्रेरणा में.
And I feel it's moving through this building. You may think I'm storing to you, but it's the truth.
मैं इसे अनुभव करता हूँ. देखिए इस भवन में घूम रहा है. आप सोच सकते हैं कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, परंतु ये सत्य है.
Now, I don't think I'll even call a prayer line. I think I'll stand right here and just ask God to confirm that I've told you the truth. That's right. This time wonders.
अब मैं नहीं सोचता कि मैं अब प्रार्थना पंक्ति को भी बुलाऊं. मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक यहाँ पर खड़ा हूँ और परमेश्वर से बस इसकी पुष्टि के लिए मांगूं कि जो मैंने आपको बताया सत्य है, ये ठीक बात है, चिन्ह चमत्कारों के साथ. यहाँ पर कितने हैं जो चंगा होना चाहते हैं? बीमार लोग, आप जहाँ भी हैं हाथ खड़ा करें, बस अपना हाथ उठाकर कहें मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ठीक है. मैं चाहता हूँ कि आप देखें, जिएं और विश्वास करें. कोई यहाँ इस सभा में यहाँ से होते हुए कोई यहाँ से केवल देखकर और कहे प्रभु यीशु. इस प्रकार से यही कारण है कि मैंने पहले वेदी की बुलाहट की. हमें उसका अनुग्रह पाना है, ये मेरे लिए कुछ नया है. मुझे पहले उसका अनुग्रह प्राप्त करना था. यदि मैं उसका अनुग्रह पा गया और अनुग्रह कर दिया और आप 1 या 2 दर्जन प्राणी तभी उसके पास आए, निश्चय ही, निश्चय ही. अब आप में से प्रत्येक जो मसीह के पास आया है, भली पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया पाई है और इसमें जाएं और जब तक उसका बपतिस्मा ना पालें ढूंढते रहें, हर रात्रि हर दिन बस प्रार्थना करते जाएं.
And when you're looking at you people sick, if I told you the truth, God will testify that it's true. That's right. Only can do it. And God will make it known if you just pray and believe with all your heart. Just look and say this.
और जब आप ढूंढ रहे हैं, अब आप लोग जो बीमार हैं, यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो परमेश्वर इस सत्य को प्रमाणित करेगा. ये ठीक बात है, केवल वो ही इसे कर सकता है और परमेश्वर इसे प्रकट करेगा. यदि आप केवल प्रार्थना करेंगे और अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, केवल देखें और ये कहें.
When the angel of the Lord met me out there at Greensville, Indiana, 8 years ago, as of the instant a child followed me, showing vision. When I went to him, he said, if you'll be sincere, get the people to believe you, and nothing shall stand before the prayer.
जब परमेश्वर का वो स्वर्गदूत मुझे वहाँ ग्रीन मिल इंडियाना में 8 वर्षों पहले मिला, बालक होने पर भी मेरे साथ साथ रहा, दर्शन दिखाता रहा. जब मैं उसके पास गया, उसने कहा यदि तुम सच्चे रहोगे और लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लोगे तो तुम्हारी प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब वो आपके लिए भी वैसा ही करेगा जो तब किया, वो मृतकों में से जी उठा है और वो यहाँ श्रोतागण उसके सामने हैं।
He knows what's on every one of you, what you've done, what your trouble, everything about it. Do you believe that? Then believe it with all your heart.
वो जानता है कि आप में से प्रत्येक पर क्या है, आपने क्या किया है, आपकी क्या परेशानी है, इस विषय में सब कुछ, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तो फिर अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें।
Notice the young man sitting here, believing, trying to, having faith. You believe that God will let me know what's wrong with you? If He will, will you accept your healing?
मैं देख रहा हूँ कि एक नबी यहाँ पर बैठा हुआ है, विश्वास पाने का यत्न कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता देगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है? क्या आप, यदि वो ये करेगा तो क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करेंगे? आपको हृदय रोग है, क्या ये ठीक बात नहीं है? क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि आप इससे चंगे हो गए हैं? क्या आप इसका विश्वास करेंगे? एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं।
He got a nervous heart and a murmuring heart bothered you for some time.
आपका अधीर और बुड़बुड़ाने वाला हृदय है, ये कभी कभी आपको परेशान करता है। केवल तब आप लेट भी जाते हैं, ये आपको आराम देता है और आपकी धड़कन तेज हो गई है, फड़क रहा था, क्या ये ठीक बात है? कारण ये कि आपके पेट में बदहजमी कर देता है, उन नाड़ियों के द्वारा आ रहा है, क्या ये सत्य नहीं है? अब आप इससे और परेशान नहीं होंगे, जो अब आपके पास है उसमें बने रहें।
I'm not reading your mind. I'm a perfect stranger to you. You're just a man sitting here. Is that right? Never seen you in my life. Never know nothing about you. Is that true? Three angels of the Lord is here.
मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। आप केवल वहाँ बैठे हुए हैं। एक पुरुष हैं बस। क्या ये ठीक बात है? आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आपके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या ये सत्य है? विश्वास कीजिए कि प्रभु यहाँ पर है।
Frankly, young man, I want to ask you something, and you see if this is truth or not. About a few moments ago, all of a sudden, something strange came over you, and I began to talk about the stain gone out of his fingers. Wasn't that right?
Frankly, नवयुवक, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और आप देखिए कि यदि ये सत्य है या नहीं। अभी कुछ क्षणों पहले अचानक से कुछ विचित्र आपके ऊपर आया, जब मैंने इस विषय में आपसे बात करना आरंभ किया, डंकधारी में से डंक चला गया, क्या ये सत्य नहीं था?
Was the same feeling you had a sick, isn't that right? And didn't you look at me at that same time and my eyes touched you at the same time? That's when you were healed with heart trouble. Right there. Sincerely.
क्या ये विचित्र सी अनुभूति आपको जब वो यहाँ आप बैठे थे नहीं हुई? क्या ये सत्य नहीं है? और उसी समय आप मेरी ओर नहीं देख रहे थे, और उसी समय मेरी आंखों ने आपको देखा, तभी आप चंगे हुए थे अपने हृदय रोग से ठीक वहीं। आमीन, बिल्कुल ठीक, वो यहाँ पर है। मित्रों, मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल सत्य बोलता हूँ और परमेश्वर इसे सत्य सिद्ध करता है।
What do you think about it, sir, in our next room? You believe me to be God's prophet?
आप जो उनसे अगले बैठे हैं, क्या सोचते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या मुझ पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं?
You believe that God is sitting closer on the front seat? That's the reason I'm talking to you so much, spirit back and behind and around me. But do you believe if I contact your spirit, God will reveal what's wrong? Would you accept your healing?
क्या विश्वास करेंगे यदि परमेश्वर, आप यहाँ जो सामने की कुर्सी पर बैठे हैं, यही कारण है कि मैं आप लोगों से बहुत बोल रहा हूँ, ये यहाँ मेरे पीछे और मेरे चारों ओर, परंतु क्या अविश्वास करते हैं? यदि मैं आपकी आत्मा से संबंध स्थापित करूँ, परमेश्वर प्रकट करेगा कि क्या गड़बड़ी है। क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगे? आप मधुमेह रोगी हैं, क्या ये ठीक बात है? यदि ये सत्य है तो आप अपना हाथ उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप अपनी चंगाई को अब स्वीकार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण रूप से चंगा कर दे, परमेश्वर आपको आशीष दे।
Have faith, somebody in here believes. Have faith with all your heart.
विश्वास कीजिए, यहाँ कोई विश्वास करता है, विश्वास कीजिए अपने संपूर्ण हृदय से।
See a young man sitting with a blue suit on. That stands out above him. You have a skin disease, don't you, young man? Isn't that right? Stand up on the seat.
मैं वहाँ एक नवयुवक को नीला सूट पहने हुए बैठा देखता हूँ, ये वहाँ उसके ऊपर खड़ा है। आपको चर्म रोग है क्या? नहीं नवयुवक, क्या ये ठीक बात है? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।
Oh, I see you with this delegation. Is that right? So you want to go home well? Raise up your hand and say, Lord Jesus, I now believe the angel of the Lord leads along and I believe that I am healed.
ओ, मैं देखता हूँ कि आप इस प्रतिनिधि मंडल के साथ हैं, क्या ये ठीक बात है? अच्छा, क्या आप घर चंगे होकर जाना चाहते हैं? अपना हाथ उठाकर और कहें, प्रभु यीशु, मैं अब विश्वास करता हूँ कि प्रभु का स्वर्गदूत अगुवाई पर है और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ। उससे अगला व्यक्ति, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप भी विश्वास करते हैं? एक मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि मैं आपको देख सकूं। क्या मुझ पर परमेश्वर का दास होने का विश्वास करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से? क्या आप अपने हृदय रोग पर जयवंत होना चाहते हैं? आपको यही था क्या? नहीं था आपको यही था? मैंने कहा, अब ये आपको नहीं है, आप भी घर जा सकते हैं।
The next man to him, what do you think about it, sir? You believe with all your heart? You believe me to be God's prophet? Stand up on your feet.
उससे अगला व्यक्ति, श्रीमान, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।
You believe with all your heart now? You have nervousness, isn't that right? Is that right? Raise up your hand. You go home well now. Jesus Christ makes you well.
क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? आपको घबराहट रहती है, क्या ये ठीक बात है? समझे, क्या ये ठीक बात है? अपना हाथ उठाएं, अब आप घर चंगे होकर जा सकते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। उस अगले व्यक्ति के विषय में क्या है जो पंक्ति के अंत में खड़ा है? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं, उसका दास होने का? आप विश्वास करते हैं कि वो मुझे बता देगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी है, ताकि आप अपनी चंगाई को स्वीकार करेंगे? ये आपके गले में है, क्या ये ठीक बात है? घर जाएं और यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ रहें।
Anybody else in this building that wants to be made well can raise or be made well. If you believe me as God's servant, stand to your feet.
इस भवन में कोई और जो चंगा होना चाहता है, हाथ उठाकर चंगा हो सकता है। यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है, एक परमेश्वर के सेवक के समान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।
God bless you. Be made well. Thank you. There it goes. God be blessed. Every one of you, raise your hands to God. Our Heavenly Father, I now condemn every disease of this building, cast out every evil spirit, and may the Holy Ghost take over now and make every person well.
परमेश्वर आपको आशीष दे। स्त्री रोग, कैंसर, ये जा रहा है, परमेश्वर आशीष करे। आप में से प्रत्येक परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाए। हमारे स्वर्गीय पिता, अब इस भवन की प्रत्येक बीमारी को मैं दोषी ठहराता हूँ। हर प्रेत आत्मा को निकाल दें और पवित्र आत्मा अपना अधिकार ले ले और प्रत्येक व्यक्ति को चंगा कर दे।
Lay your hands over on one another and say, Praise the Lord, everywhere, and rejoice and be happy, for Jesus Christ is here, the Lamb of God to make you well, everyone.
अपने हाथ एक दूसरे पर रखें और कहें, प्रभु की महिमा हो हर जगह और आनंदित और प्रसन्न रहें, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर है, परमेश्वर का मेमना, आपको चंगा करने के लिए प्रत्येक